राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है,
Rama, Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Balaram, Krishna Balaram,
बलराम जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय गौरनिताय जय गौरनिताय
प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
बलराम की
जय
शशि गौर निताय की
जय
श्रील प्रभुपाद की
जय
पिताय गौर प्रेमानंदे
हरि हरि बो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपुतनुभिंगम केशवदेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशवदेता नरहरि रूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे वामनरूपा जय जगदीश हरे
केशवद्रीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशवद्रीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे
भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में हमने प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण की। प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। आह्लाद का अर्थ होता है आनंद। और जो पूरा पूरा आनंदित हो, जो संपूर्ण रूप से सुखी है, उसे प्रह्लाद कहते हैं। प्रह्लाद महाराज भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हैं, अतः पूर्ण रूप से सुखी हैं। मात्र 5 साल के बालक हैं और 5 साल की आयु में भगवान श्री विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। किसी भी वय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं, व्याधस्या चरणम, एक व्याद्र था जो पशुओं की हत्या कर रहा था, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो गया। बताइए उस व्याद्र का क्या आचरण था? आचरण कोई ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज की कौन सी बड़ी उम्र थी, परंतु फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। विद्या गजेंद्र का, भागवत के 8 स्कंद में गजेंद्र हाथी की कथा है, और वह हाथी ने हाथी के शरीर में भगवान की प्राप्ति की। तो बताइए वह हाथी कौन सी कॉलेज में पढ़ने गया था या कौन सी स्कूल में पढ़ने गया था, लेकिन फिर भी हाथी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। कुब्जा किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा में कौन सी बड़ी सुंदरता थी, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त हो गई। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, लेकिन फिर भी सुदामा जी भगवान को प्राप्त हुए। यदुपति उग्रस्य किम पौरुषम, यदुकुल के राजा उग्रसेन में कौन सा बड़ा पौरुषम शक्ति थी, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त हो गए। इससे साबित होता है, इससे प्रूड होता है, भगवान जो है किसी के गुण से नहीं रिझते हैं। भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव, माधव भगवान श्री कृष्ण भक्त्या तुष्टति केवलम, मात्र भक्ति से संतुष्ट होते हैं, नच गुणे गुणों से नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, और यह भक्ति किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में कोई भी कर सकता है। गजेंद्र जैसा हाथी यदि कृष्ण की भक्ति कर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। भगवान ने इतना सुंदर देह हमें प्रदान किया है। प्रह्लाद महाराज 5 साल की उम्र है, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करते हैं, और प्रह्लाद महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिनके गुरु नारद मुनि हैं। संसार में देखा गया है कि प्रायः जो शिष्य होते हैं वे अपने गुरु की महिमा गाते हैं, प्रायः शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, ऐसे हजारों किस्से देखे जाते हैं, परंतु एक गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करे बहुत कम देखा गया है। प्रह्लाद महाराज के गुरु नारद जी हैं, और नारद जी राजसूय सभा में, जिस सभा में एक से एक रति अतिरथी महारथी बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। ऐसी राजसूय सभा में नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद के गुण गा रहे हैं। शिष्य हो तो प्रहलाद जैसा, तो ऐसी प्रहलाद महाराज की कथा गत सत्र में हम श्रवण कर रहे थे। अंत में हमने श्रवण किया था, आइए अचल गोविंद आगे आइए। गत सत्र में हमने श्रवण किया पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद गुरुकुल से वापस आए और पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, एक साल में जो पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुख द्विघ्न ध्याम असत्ग्रहात् हितवात्म पातम गृहंध कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, यह गृहस्थ जीवन अंधेरे कुएं के समान है। प्रायो ऐसे गृहस्थ जीवन में फंसकर लोगों की बुद्धि उद्विग्न हो जाती है और ऐसी उद्विग्न बुद्धि के कारण व्यक्ति रात दिन दुखी रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वनम गतोयत, वन में चले जाए और वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। देखिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाइए, ये बात सत्य है। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो घर से निकलना होगा। घर से निकलकर भगवान के धाम में वृंदावन गोकुल मथुरा या भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत है। घर बैठे भगवान नहीं मिलते हैं, घर बैठे भी भगवान मिल सकते हैं, परंतु घर को यदि मंदिर बनाया हो तब। आज तो सब लोग अपने घर को होटल बनाते हैं, ऐसी होटल जैसी घर में कभी भगवान नहीं आ सकते हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकलना होगा। वनम गतो यत, पिताजी वन में जाना ही सबसे बड़ी बात है। और वन में जाकर क्या करना है? हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लेना है, क्योंकि हरि मात्र वन में ही मिलते हैं। एक बार एक राजा के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान से मिलूंगा। पूछा किसी को, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो लोगों ने कहा कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा घर छोड़कर वन में जाते हैं, इसलिए आप वन में जाइए, वन में भगवान अवश्य मिलेंगे। तो राजा ने सोचा कि कल सुबह उठकर मैं वन में चला जाऊंगा घर बार छोड़कर। दूसरे दिन सुबह हुई और मंत्री इत्यादियों की बातों में आ गए और राजा ने अपना निर्णय बदल दिया। अब हम वन में नहीं जाएंगे, मन चंगा तो कथोटी में गंगा, लोग कहते हैं ना। अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, गंगा में जाने की क्या जरूरत है, यहां से हरिद्वार। मन चंगा, यदि मन चंगा है तो कथोटी में गंगा, घर पर गंगा है। परंतु वह मूर्ख लोग नहीं जानते हैं चंगा मन किसे कहा जाता है। चंगा मन घर बैठे नहीं होता है। मन को यदि चंगा करना है, शुद्ध करना है, तो घर से बाहर मंदिर या भगवान के धाम में जाना होगा या भगवान का नाम लेना होगा। राजा ने अपना निर्णय बदल दिया है कि अब हम नहीं जाएंगे। उस राज्य के थोड़े दूर एक संत रहते थे। उस संत को पता चला राजा को भगवान की प्राप्ति करनी है और सोचा था घर से बाहर वन में जाऊंगा, परंतु मंत्रियों के कहने पर राजा बाहर नहीं निकल रहा है। तब वह संत उठहारे का रूप बनाकर उस राजा के राज्य में आया। ऊंटहारा जानते हैं, ऊंट को बेचने वाला, और ऊंटहारे का रूप बनाकर राजा के राज्य में आया। आकर उस राजा के राज्य में सभी के घर पर जा जाकर पूछता था कि आपने मेरे ऊंट को देखा है। वे घर वाले कहते थे, जरा मेरा दरवाजा तो देखो, इस दरवाजे से ऊंट का बच्चा भी नहीं आ सकता है और ऊंट मेरे घर पर आए। कहा, नहीं, ये तो मेरा ऊंट खो गया है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं। दूसरे घर पे जाकर खटखटाकर रात को 12-12 2-2 बजे तक घरों में जा जाकर पूछते थे, आपने मेरे ऊंट को देखा। उस राजा के राज्य में सब लोग थक गए, परेशान हो गए कि हमको सोने नहीं दे रहा है। सारी प्रजा मिलकर राजा के पास गई और राजा को कहा, राजन, ये हमारे राज्य में एक व्यक्ति आया है, रात दिन हमको परेशान करते रहता है। बोले, उस व्यक्ति को बुलाओ। ऊंटहारे को राजा के सभा में खड़ा किया गया। राजा ने पूछा, आप सबको परेशान क्यों कर रहे हो। उस ऊंटहारे ने कहा, राजा, क्या करूं, मेरा ऊंट खो गया है। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं चलता है इतना बड़ा ऊंट किसी के छोटे से घर में नहीं जा सकता है। जरा लोगों के दरवाजे को तो देखो, कितने छोटे हैं, घर कितने छोटे हैं, तुम्हारा इतना बड़ा ऊंट किसी के घर पे कैसे जा सकता है। तब ऊंटहारे ने इतना ही कहा, राजन, यही समझाने के लिए मैं आया हूं, भगवान विभू हैं, भगवान अनंत हैं, इतने बड़े भगवान आपके घर में कैसे आ सकते हैं। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलिए। यदि इतना छोटा सा प्राणी, ये छोटा सा पशु ऊंट यदि किसी के घर पर नहीं आ सकता है, तो भगवान तो विभू है, वह भगवान आपके घर में कैसे रह सकते हैं राजन। इसलिए आप बाहर निकल गए। बाहर भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में जाना होगा, और भगवान वास्तव में वन में रहते हैं। अब देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र आए, तो भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में रहे। कृष्ण आए तो जन्म के दिन ही मथुरा से वन में चले गए वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो कल आप फिल्म में देख रहे होंगे, 24 वर्ष के बाद झारखंड के जंगलों में वन में भटक गए थे। भगवान को वन बहुत प्रिय है, पसंद है, इसलिए भगवान वन में रहते हैं। और वन में भी जो श्रेष्ठ वन वृंदावन, वृंदावनम परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा धाम है जिसे छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, हरि भगवान श्री कृष्ण नित्य ब्रज वृंदावन में विराजते हैं, कभी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ऐसे वृंदावन चले जाना, यह है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रहलाद महाराज ने यह उपदेश दिया, हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ और प्रहलाद के गुरु शंड और अमर को डांट कर कहा, जाओ इसे वापस गुरुकुल ले जाओ और ठीक से सिखाओ। शंड और अमर प्रहलाद को वापस गुरुकुल में लेकर जाते हैं और गुरुकुल में जाकर शंड और अमर ध्यान रखते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति गुरुकुल में आ न जाए। राजनीति, दाव पेच, कैसे कर वसूल करना, कैसे राज्य करना, युद्ध करना, ये सारी शिक्षा शंड और अमर प्रहलाद को सिखाते हैं। प्रहलाद के साथ अनेक शिष्य भी हैं, उनके मित्र भी हैं। एक साल तक यह शिक्षा सिखाई और फिर से प्रहलाद अपने घर वापस आए वेकेशन में, छुट्टियों में प्रहलाद जब अपने घर पर आए, माता ने स्नान कराया और प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास गए। नारद जी कहते हैं, आरोप्य अंकम अवग्राय मूर्धन्यश्रु कलांबु भी। एक साल के बाद अपना पुत्र घर पर आया है, यह देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया, आरोप्य अंकम अपनी बाहों में भर लिया। मूर्धन्य अश्रु कलांबु भी, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के मस्तक को सूंघा और प्रहलाद के प्रति इतना वात्सल्य भाव उमड़ गया, इतना वात्सल्य भाव उमड़ गया कि वह कठोर हिरण्यकश्यप के आंखों से अश्रु निकलने लगे। मेरा बेटा एक साल के बाद आया है। अब देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी खूंखार हो परंतु अपने पुत्र से प्रेम तो अवश्य करता है। सिंह हो और शेर बहुत खूंखार जानवर है परंतु वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। वैसे हिरण्यकश्यप दुनिया वालों के लिए तो बहुत खूंखार था परंतु अपने पुत्र के प्रति स्नेह था, प्रेम था। उनके आंखों से अश्रु निकले। आसिंच यन विकस वक्त्र, हिरण्यकश्यप के आंखों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, प्रहलाद महाराज पूरे भीग गए। एक बार स्नान करके तो आए थे, दूसरा स्नान हो गया अश्रु से। और फिर इदम आह युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से अपने पुत्र को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप इस प्रकार से बोला। हिरण्यकश्यप वाच, प्रहलादान उच्यताम तात स्वदितम किंचित उत्तमम, काले तेन वता युष्मन यत शिक्षत गुरोर भवान। हे आयुष्मन, हे प्रहलाद, आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारी लंबी उम्र हो और भगवान आपके गुरु ने यत शिक्षत जो शिक्षा प्रदान की है उस शिक्षा में से कश्चित उत्तमम स्वधितम, उस शिक्षा में से सबसे उत्तम शिक्षा कौन सी लगी। अब प्रहलाद महाराज फिर से मन में सोच रहे हैं कि नहीं पूछे तो अच्छा है, परंतु क्या पता ये हिरण्यकश्यप का स्वभाव है। पूछ रहे हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने जो तुम्हें पढ़ाया उसमें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यता तत्मन्येधीतमोत्तमम्। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी, भगवान श्री विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, उनके चरण कमल की सेवा के द्वारा, अर्चन के द्वारा, वंदन के द्वारा, दास्य के द्वारा, साख्य के द्वारा और आत्मनिवेदन के द्वारा। भगवान श्री विष्णु को 9 प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति नौ प्रकार की है, जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। हमारे शास्त्र में आचार्यों के द्वारा और यहां प्रहलाद महाराज के द्वारा नवदा भक्ति का विधान हो रहा है। उस नवदा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति है श्रवणम भक्ति। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम कार्य, सर्वप्रथम साधन और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम भक्ति। भक्तों, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। भगवान ने इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, इस कर्ण के माध्यम से भगवान की कथा सुनना, इसे श्रवण भक्ति कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद महाराज कह रहे हैं श्रवणम। श्रवण का अर्थ होता है कर्ण के माध्यम से भगवत कथा सुनना। श्रवण भक्ति ही सबसे उत्तम भक्ति है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार श्रवण के ऊपर है। आज आप यहां पर आए, कथा के बाद कई लोग व्यसन से मुक्त होंगे, भगवान की भक्ति के प्रति अग्रसर हो गए। हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, हम यदि ध्यान से विचार करें तो उस परिवर्तन का मूल श्रवण है। हमने किसी ना किसी के मुख से सुना है और उस सुनने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। शास्त्र में कहा गया है श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, सुनने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, सुनने से ही हमारी जो दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, ये दूर हो जाती है। भगवान की भक्ति में सुनना ये सर्वप्रथम अंग है और सबसे श्रेष्ठ अंग है। वैसे तो भक्ति के 64 अंग हैं, परंतु ये सभी अंगों में श्रवण जो है सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अन्य साधन, अन्य अंग भक्ति के करते समय हो सकता है कि हमारा मन भगवान में लगे या न लगे, हमारी बुद्धि भगवान में लगे या न लगे, परंतु श्रवण करते समय हमारे नेत्र, हमारा मन, हमारी बुद्धि निश्चित भगवान में लग जाती है। ये अनुभव की गई बात है, इसलिए श्रवण भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। और जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का स्वभाव है, भगवान चाहते हैं कि संसार के लोग मेरी कथा सुने। यदि कोई जीवन में मात्र श्रवण करता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति के ये 5 साधन में से एक साधन, वह भी अल्प मात्रा में, इसमें से कोई एक साधन भी कर लेता है तब भी वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ये श्रवण करके कोई भगवान को प्राप्त हुआ? हां भक्तों, मात्र भगवत कथा श्रवण करके भगवान की प्राप्ति कर ली, इसके ज्वलन प्रमाण है महाराज परीक्षित, जो इस जगत के चक्रवर्ती सम्राट थे, कुरु वंश के एकमात्र वंशधर थे, हस्तिनापुर की गादी पर राज कर रहे थे। ऐसे महाराज परीक्षित एक दिन मृगड़ा करने के लिए वन में गए। देव योग, गर्मी का दिन था, प्यास लगी और वहां पर जलाशय को ढूंढ रहे थे, पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर एक संत की कुटिया थी, वहां गए। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि के आश्रम में गए, परंतु समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया का राजा हूं, मेरा स्वागत होना चाहिए, और ये समीक ऋषि ध्यान में बैठे। महाराज परीक्षित देखना चाहते थे वास्तव में ध्यान में बैठे हैं या फिर नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में रख दिया। समीक ऋषि ध्यान में मग्न रहे, परीक्षित समझ गए कि वास्तविक ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित महाराज वहां से निकल गए, परंतु यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, और वह बालक दौड़ता हुआ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास गया, और श्रृंगी ऋषि के पास जाकर उस बालक ने कहा कि आपके पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है। और उस समय श्रृंगी ने देखे बिना हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, वह व्यक्ति आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा डस लिया जाएगा, और आज से 7 दिन के बाद वह मर जाएगा। श्राप दे दिया, और श्रृंगी दौड़ते हुए वापस अपने पिता के पास आए। पिता जीवित थे, और वह सांप मरा हुआ सांप था। श्रृंगी दोनों हाथ जोड़कर पिता को कहते हैं, पिताजी आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ बेटा? कहा, पिताजी आज हमने खामखा किसी को श्राप दे दिया। तब समीक ऋषि ध्यान करके देखते हैं मेरे पुत्र ने किसको श्राप दिया है। समीक ऋषि ने जब ध्यान किया और पता चला कि मेरे पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है, समीक ऋषि बहुत दुखी हुए, बहुत पछतावा हुआ, और अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा तूने अपने जीवन में सबसे बड़ा और सबसे बुरा कार्य किया है। तूने एक धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्राप दिया है। समीक ऋषि की वह बात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी कहते हैं, अफसोस करते हैं, राजा परीक्षित नहीं रहेंगे। देखना बेटा, इस संसार में चोरियां होगी, डाके डालेंगे, अपशब्द बोलेंगे, अपहरण करेंगे, घोर कलयुग आएगा परीक्षित के अभाव में। अंत में समीक ऋषि भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मेरे पुत्र की भूल पुत्र की नहीं पिता की है, कृपया करके आप मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। और तुरंत समीक ऋषि किसी को भेजते हैं, जाओ परीक्षित को जाकर बताओ कि 7 दिन के बाद आपको मरना है, बचने का उपाय कर लो। उसी समय एक व्यक्ति महाराज परीक्षित के पास गए और जाकर खबर सुनाई कि आप 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु है। भक्तों, उस समय परीक्षित ने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया, मृत्यु से बचने का उपाय असुरगण करते हैं। जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, ये मृत्यु से बचने का उपाय नहीं करते, मृत्यु को संवारने का उपाय करते हैं। यहां परीक्षित को पता चला कि मुझे मरना है, 7 दिन में मेरी मृत्यु है। उसी क्षण अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करके केवल एक वस्त्र कोपिन पहनकर लाखों लाख दास दासी राज रजवाड़े नौकर चाकर धन संपत्ति को छोड़कर महाराज परीक्षित हरिद्वार जाने के लिए निकल पड़े, छोड़ दिया सब और मृत्यु को संवारना चाहते थे। और आप देखिए एक और कंस को भी पता चला, जब कंस देवकी और वसुदेव का रथ चला रहा था तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तब कंस ने क्या किया, अपने मृत्यु को टालने की कोशिश की। हिरण्यकश्यपु ने अपने मृत्यु को टालने की कोशिश की। ये मृत्यु को टालने की कोशिश जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वह करते हैं, साधु संत होते हैं मृत्यु को टालते नहीं है, मृत्यु को सवारते हैं। ये जानते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहां तो आप देखिए मृत्यु आती है, मृत्यु से पहले नोटिस आती है। ये क्रूर काल तुरंत किसी को नहीं मारता है, मारने से पहले नोटिस भेजता है। सरकारी नौकरी करने वाले जानते हैं जब पुलिस स्टेशन में किसी को ले जाना होता है तो नोटिस भेजते हैं, तो भगवान भी मारने से पहले नोटिस भेजते हैं। नोटिस क्या है, पहले बाल सफेद कर देते हैं, ये नोटिस है कि देखिए अब सफेद हो गए, अब मृत्यु नजदीक आ रही है। बाल सफेद कर देते हैं, दांत तुड़वा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान बाल सफेद इसलिए करते हैं कि अब मृत्यु के दिन करीब आए हैं, थोड़ा भजन कर लो। परंतु हम लोग वह सफेद बाल को काला करा देते हैं, बुढ़ापे से बचना चाहते हैं। परंतु महाराज परीक्षित निकल गए, हरिद्वार में गंगा के तट पर खड़े हैं, और महाराज परीक्षित के मन में अनेक जिज्ञासा हुई, मैं क्या करूं। वहां जाकर अनेक संतों को पूछा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने राय दी कि राजन आप एक काम करो, क्योंकि आप राजा हो इसलिए आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप दान करो। राजा परीक्षित कहते मैं दान करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दान करने से पुण्य मिलता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में जाने के बाद एक ना एक दिन तो पृथ्वी पर वापस आना ही पड़ता है। शिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, और कोई अच्छा उपाय बताइए। कई लोगों ने अनेक अनेक उपाय बताए, परंतु महाराज परीक्षित के हृदय में इच्छा थी कि मैं भगवान की कथा सुनूं, गायत्री विष्णु गाथा। और जब किसी भक्त के हृदय में वास्तविक शुद्ध जिज्ञासा होती है तब भगवान की कृपा उन पर होती है, और भगवान उनके लिए शुद्ध गुरु भेजते हैं, सदगुरु भेजते हैं। परीक्षित महाराज के हृदय में गाड़ी बंगला नौकर चाकर धन संपत्ति ये सब भौतिक भोग भोगतने की इच्छा नहीं थी। परीक्षित की एक ही इच्छा थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, और ऐसी शुद्ध इच्छा के कारण भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज के पास भेज दिया। बताइए सुखदेव से बड़े गुरु कौन हो सकते हैं। और इस संसार में कभी कभी हमें सदगुरु नहीं मिलते हैं, कभी कभी पाखंडी गुरु मिल जाते हैं। कारण क्या है, हमारी इच्छा भी ऐसी ही होती है। यदि हमारी शुद्ध इच्छा हो तो हमें शुद्ध गुरु मिलेंगे, परंतु हमारी अशुद्ध इच्छा है, हम भी संसार के भौतिक भोग में फंसे रहना चाहते हैं, हमारी भी अभी इच्छा है भौतिक भोग भोगतने की, तो फिर वैसे ही गुरु मिलते हैं। आपको जो खाना है खाओ, जो करना है करो, सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब करते रहो, बस दक्षिणा देकर जाना, ऐसे गुरु मिलते हैं। परंतु शुद्ध जिज्ञासा हो, एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, तब सदगुरु मिलते हैं। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु कृपया करके आप मुझे सदगुरु दिलाइए, जिस सदगुरु के पद चिन्हों पे चलकर, जिस सदगुरु के मुख से उपदेश सुनकर मैं आपकी प्राप्ति कर सकूं। इस संसार में प्रायः कुछ लोग चाहते हैं कि हम भौतिक भोग भोगे, संसार के ऐश और आराम में रहे और थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी कर ले। तो उस लोगों को ऐसे गुरु मिलते हैं, गुरुजी भी कहते हैं आप चाय पियो, कॉफी पियो, जो पीना है पियो, हम बैठे हैं। परंतु यदि शुद्ध इच्छा है, एकमात्र कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, तो कृष्ण की कृपा से, ये काम कृष्ण का है कि वे आपके पास सद्गुरु को भेजेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पास आए। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की और इस जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। कहा जाता है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन और 7 रात तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और 7वें दिन वह तक्षक नाग आए। उसके पहले तो महाराज परीक्षित ये शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में चले गए। इसे कहते हैं श्रवण भक्ति। श्रीमद् भागवत कथा सुनना ये भक्ति है। इस संसार में कई ऐसे उपदेश होते हैं जिससे सुनने के बाद भक्ति करते हैं, परंतु ये भागवत सुनना ही एक भक्ति है। ऐसा नहीं कि भागवत सुनने के बाद फिर जीवन में उतारेंगे, वह करेंगे, यह करेंगे तो भक्ति नहीं। भागवत सुनना ही एक भक्ति है और फिर उसे जीवन में उतारा गया तब तो बहुत सुंदर बात है। तो यह है श्रवण भक्ति, सुनना। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दूसरी विधि बताते हैं, कीर्तनम। श्रवण कान के द्वारा होता है, कीर्तन जिह्वा के द्वारा होता है। कीर्तन माने भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जाप करना या भगवान के गुणगान गाना, भजन गाना, भगवान के रूप गुण लीला का कीर्तन करना, गाना, इसे कीर्तन कहा जाता है। ये कीर्तन भक्ति भी अपने आप में पूर्ण है। और इस संसार में मान लो श्रवण करना एक बार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से भागवत का आयोजन रोज रोज तो होता नहीं है। द्वापर में होता था रोज रोज, परंतु रोज नहीं होता है तो आप सोचोगे अब कहां से श्रवण करें। परंतु जब श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है तो हमें चाहिए कि कीर्तन करें, और कीर्तन भगवान के नाम का करना चाहिए। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार भगवान के नाम के रूप में हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग मात्र नाम के ऊपर आधारित है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही कलयुग में भगवान की प्राप्ति करा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में यहां तक कहते हैं कि चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा चारों युग में है, परंतु कली विशेष नहीं आनी पाऊ। परंतु कलयुग में तो भगवान के नाम के अलावा किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही हमारा उद्धार हो सकता है, और भगवान के नाम लेना इसे कीर्तन भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम लेने से हमारा उद्धार हो सकता है। हम सब भक्तों को चाहिए कि भगवान का नाम लेकर भगवान के गुणगान, भगवान के गुण रूप महिमा की चर्चा करके भगवान को प्रसन्न करें। मन में प्रश्न हो सकता है, ऐसा कोई दृष्टांत है जो केवल भगवान का नाम लेकर भगवान की प्राप्ति किया हो? हाँ, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैया सकी सकीर्तने, वैया सकी व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी मात्र कीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो इस प्रकार यह कीर्तन भक्ति, तत्पश्चात प्रहलाद महाराज तीसरी भक्ति कहते हैं स्मरणम। जब श्रवण करने का मौका न हो, कीर्तन करने का मौका न हो, तब आप स्मरण भक्ति कर सकते हो। स्मरण का अर्थ होता है अपने मन में भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण का स्मरण करना, याद करना। अपने मन में भगवान का स्मरण करना यह भी एक भक्ति है। और गीता में तो भगवान बार बार कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मैं एव मना आदत्स्व, अपना मन मुझ में लगाओ। तो हमारा मन भगवान की लीला में, भगवान की कथा में लगाना चाहिए, यह भी एक भक्ति है। परंतु हमारा मन तब तक हम भगवान में नहीं लगा सकते हैं जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं। तो सबसे पहले भगवान के बारे में खूब सुनना चाहिए और सुनकर फिर आप स्मरण भक्ति भी कर सकते हैं। आप कहोगे हम कहां सुने, कैसे सुने? बहुत सुंदर अवसर यहां भागवत सप्ताह का है, यहां सुन सकते हैं। और इस कथा के बाद अनेक कथाओं की सीडी कैसेट यहां पर उपलब्ध है, भागवत भगवत गीता जैसा ग्रंथ उपलब्ध है। आप सब भक्त यहां से श्रीमद् भागवत कथा की सीडी कैसेट इत्यादि लेकर जा सकते हो, अपने घर पर बैठे बैठे सुन सकते हो। और देखिए भगवान की कृपा, तो देखिए यहां पर तो हमारे समय से आपको आना पड़ता है, परंतु ये सीडी को आप कैसेट को अपने घर पर लेकर जाओगे, जब आपको भोजन करना होगा तो स्टॉप कर दिया, रुका दिया, बेचारे बोलने वाले वक्ता रुक जाएंगे, जब मन हुआ शुरू कर दिया, जब मन हुआ रिवाइंड कर दिया, जब मन हुआ काट दिया, है? आपके हाथ में। तो इस प्रकार से ये भौतिक उपकरण का लाभ भी हमें भक्ति करने में ले लेना चाहिए। यह स्मरण, हमारे मन में भगवान का स्मरण करना। तत्पश्चात चौथी भक्ति बताते हैं पाद सेवनम, भगवान के चरण कमल की सेवा करना। अच्छा, स्मरण भक्ति के आचार्य, स्मरण करके कौन भगवान को प्राप्त हुआ? कहते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति करते थे। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर पर भगवान का नाम नहीं लेने देते हैं, हम जहां ऑफिस में जाते हैं वहां भगवान का नाम नहीं लेने देते हैं। ठीक है, भगवान का नाम आपको बोलने नहीं देते हैं, आप मन में तो भगवान का नाम ले सकते हो। वो व्यक्ति आपके मन में तो नहीं घुस जाएंगे, स्मरण कर सकते हैं। परंतु याद रखना चाहिए, स्मरण से श्रेष्ठ है कीर्तन और कीर्तन से श्रेष्ठ है श्रवण, श्रवण और कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार स्मरण, तत्पश्चात पाद सेवनम। पाद सेवनम भक्ति के आचार्य है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी नित्य निरंतर भगवान श्री विष्णु के चरणों में विराजमान है और भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर उनके पाद सेवन, उनके चरण की सेवा करती है। तत्पश्चात पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, आरती करना, दिया करना, इसे अर्चन कहते हैं। अर्चन के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। इसके दृष्टांत है पृथु महाराज। पृथु महाराज अर्चन भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात छठी भक्ति है वंदनम। वंदन मात्र भगवान को प्रणाम करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान को प्रणाम करना यह भी एक भक्ति है। और वंदन भक्ति करके कौन भगवान को प्राप्त हुए, कहते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने क्या किया था, मात्र वंदन किया भगवान को, और मात्र वंदन करके भगवान की प्राप्ति। तत्पश्चात दास्यम, भगवान का दास बनना और दास बनकर भगवान की सेवा पूजा भक्ति करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसके उदाहरण है अर्जुन, क्षमा कीजिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र के दास थे, दास्य भक्ति के आचार्य, दासोस्मी। कल भगवान श्री रामचंद्र की कथा हम सुनेंगे, तो उनमें यदि अवसर मिला तो हनुमान जी महाराज की भी कथा सुनेंगे। हमने कल का पूरा दिन भगवान श्री रामचंद्र के लिए रखा है, कल पूरा दिन भगवान राम की कथा सुनेंगे, तो उनमें सुनेंगे किस प्रकार हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति किए। तत्पश्चात साख्य, साख्य भक्ति के आचार्य है अर्जुन, भगवान के सखा है और सखा बनकर भगवान की प्राप्ति। और अंत में नौवी भक्ति है आत्मनिवेदनम, भगवान के लिए अपना सब कुछ दे देना, इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। और इस भक्ति के आचार्य है बलि महाराज, जिसकी कथा हम आज सुनेंगे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने कहा यह नौ प्रकार की भक्ति। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधिक उत्तमम। हे पिताजी, ये नौ प्रकार की विधि के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करना, यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी। इतना सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया ब्रह्म बंधो। शंड और अमर को बुलाया कि मैं तत्ते, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि विष्णु की नवदा भक्ति करना ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्या तुमने ऐसा सिखाया है। अरे आज तक मैं सोच रहा था कि तुम मेरे अनुचर हो, परंतु आज मुझे पता चला कि मैंने सांप को पाल रखा है, तुमने ही प्रहलाद को बिगाड़ा है। तब शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर, जो प्रहलाद के गुरु हैं, दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए हिरण्यकश्यपु को कहने लगे, सरकार न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये प्रहलाद को हमने ऐसा नहीं सिखाया। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा तो बाहर से कोई आया होगा। नहीं, हमने इस बार ध्यान रखा था, बाहर से भी कोई नहीं आया था। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तब शंड और अमर करते हैं, सरकार क्या बताइए, क्या बताए, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन, ये प्रहलाद की नैसर्गिकी रति, जन्मजात भगवान विष्णु में रति है, ये जन्म से ही विष्णु का भक्त पैदा हुआ है, न हमने सिखाया न बाहर किसी ने सिखाया। हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर शंड और अमर जो प्रहलाद के गुरु हैं उसे कहता है आप नहीं सिखाया। तब शंड और अमर प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद बेटा ये सब तुमने कहां से सीखा। प्रहलाद कहते हैं कि जो भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठकर सबको ज्ञान दे रहे हैं, उस भगवान विष्णु ने ही मुझे यह ज्ञान दिया है। अच्छा, क्या ज्ञान दिया है। प्रहलाद कहते हैं विष्णु की भक्ति करना यही संसार का सबसे बड़ा काम है। तो मानो हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर पूछता है, प्रहलाद अच्छा विष्णु की भक्ति करना ही सबसे बड़ा काम है तो संसार के सब लोग ये क्यों नहीं करते हैं? अच्छा कार्य तो सब लोग करने चाहिए। यदि विष्णु की भक्ति करना अच्छा कार्य होता तो सब लोग ये कार्य करने चाहिए। सब लोग ये कार्य क्यों नहीं करते हैं? सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी मतीन कृष्णे परत स्वतोवा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। मति न कृष्णे, कृष्णे अर्थात षष्ठी भक्ति, कृष्ण में संसार के लोगों की भक्ति न नहीं लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि संसार के लोग गृह व्रत लेकर बैठे हैं। गृह व्रत का अर्थ क्या होता है? कसम खाकर बैठे हैं, घर पर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात घर में ही रचे पचे रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? कदे अदांत गोभी, संसार के लोग भगवान विष्णु की भक्ति इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि संसार के लोगों की इंद्रियां अपने वश में नहीं है। गो का अर्थ होता है इंद्रिया, अदांत का अर्थ होता है नहीं। अपनी इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण संसार के लोग संसार से सुख ढूंढना चाहते हैं। प्रायः संसार के लोग सोचते हैं कि ये करूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा सुखी हो जाऊंगा, खेत में जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, धन प्राप्त होगा सुखी हो जाऊंगा, विवाह करूंगा सुखी हो जाऊंगा, बच्चे होंगे सुखी हो जाऊंगा। रात दिन सुखी होने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु उनकी मेहनत कैसी है? कहते हैं पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। संसार के लोग संसार से सुख खोजना चाहते हैं। वो संसार के लोग की मेहनत कैसी है? कहते हैं चबाए हुए चबाने की तरह। जो वस्तु पहले से चबाकर छोड़ दी गई है, अब उसको चबाने से आपको रस नहीं मिल सकता है। जैसे गन्ना, आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालने वाला वो मशीन में डालता है, उसे पेलता है और पूरा बूंद बूंद निकाल लेता है, पूरा निचोड़ कर निकाल लेता है। और फिर वो गन्ने का जो रस निकाल कर जो बचता है उसे चबाने से कभी रस नहीं मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार यह संसार ऐसा है, इस संसार में से कभी किसी को रस या सुख नहीं मिल सकता है, चबाए हुए की तरह है। तो इस संसार के लोग चबाए हुए को चबा रहे हैं, इसलिए उनकी मति ही कृष्ण में नहीं लग रही है। और संसार के लोग इतने अज्ञान में फंस गए हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहि अर्थ मानिन। कम से कम अपना स्वार्थ भी नहीं जानते हैं कि मेरा भला मेरा कल्याण किस में होगा। नते विदु ते न विदु स्वार्थ, संसार के लोग अपने स्वार्थ को भी न विदु नहीं जानते हैं। वास्तविक हमारा स्वार्थ, हमारा कल्याण एकमात्र भगवान की भक्ति में है, परंतु संसार के लोग ये नहीं जानते। तो मानो हिरण्यकश्यप पूछे, ठीक है संसार के लोग अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानते हैं, परंतु संसार में कुछ गुरु तो है, जो गुरु उपदेश के द्वारा अपना स्वार्थ बताते हैं। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस संसार में गुरु भी वैसे ही भरे पड़े हैं। अंधा या तांदे उपनीय माना, इस संसार के जो कुछ गुरु हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए स्वयं तो अंधे हैं, परंतु उनके जो चेले हैं वे भी अंधे बन जाते हैं। और ऐसे अज्ञानी गुरु का हाथ पकड़ना अंधे का हाथ पकड़ने के बराबर है। जैसे मान लो आपको ये रोड क्रॉस करना है, रोड के उस पार जाना है, बहुत वाहन आ रहे हैं, आप अंधे हो, आपके पास आंख नहीं है और आपने किसी और अंधे का हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा? दोनों अंधे जाएंगे। वैसे हम तो अज्ञान में फंसे हैं, परंतु कोई अज्ञानी गुरु को यदि हमने धारण कर लिया तो वह गुरु भी फंसेगा और हम भी फंसेंगे। प्रहलाद महाराज इस बात को भागवत में कहते हैं, अंधा यतांधे उपनीय माना वाचिस तंत्या उरुदाम निबद्धा। इसलिए संसार में रहने वालों की मति भगवान श्री कृष्ण में नहीं लग रही है। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद तू कभी विष्णु की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा? बोले नहीं। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देखो, देते ये चंदन वने, ये देतियों के चंदन रूपी वन में बबूल कहां से उग गया? ये चंदन के वन में बबूल है, इसे काट डालो, मार डालो इसे। अब हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को बुलाकर प्रहलाद को मारने का आदेश दे रहे हैं कि ये बालक जो है हमारे कुल का अंगार है, कुल को नष्ट करने वाला है। यद्यपि यही बालक कुल का दीपक है, परंतु हिरण्यकश्यप नहीं जान रहा है। संसार में कई बार होता है, कुछ लड़के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं परंतु माता पिता उन पर क्रोध करते हैं, ये क्या कर रहे हो? परंतु माता पिता अज्ञान में होने के कारण वे बेटा भक्त कर रहा है उस बात की महिमा को नहीं जानते। यहां पर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कुलंगार कह रहे हैं, ये कुल का अंगार है। परंतु वास्तव में आगे चल के पता चलेगा कि प्रहलाद महाराज के कारण ही हिरण्यकश्यप का उद्धार होगा। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होंगे, हिरण्यकश्यप का वध कर देंगे, तब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद से कहेंगे, बेटा प्रहलाद बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब प्रहलाद महाराज कहेंगे कि प्रभु ये निश्चित है कि हमारे पिता असुर हैं और बहुत अत्याचार किया है, परंतु यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पिता को सदगति प्रदान करना। तब वहां पर भागवत के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारे पिता की बात तो दूर रही, तुम्हारे जैसा पुत्र विष्णु का भक्त किसी कुल में जन्म ले ले तो उस कुल का तो उद्धार हो ही जाएगा, इसी के साथ उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत प्रमाण सप्तम स्कंद नवम अध्याय, भगवान नरसिंहदेव के मुख से यह वाक्य निकला है। कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना तो उद्धार कर ही लेता है, इसी के साथ साथ 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस बात को जो अज्ञान में है वह नहीं जानते हैं। और उसका पहला प्रमाण हिरण्यकश्यप नहीं जानता था कि मेरा पुत्र कितना महान है, कितने महान व्यक्ति की भगवान की भक्ति कर रहा है, नहीं। और हिरण्यकश्यप खुद अपने आप को भगवान मानता था, खुद अपने आप को भगवान मानने वाले हिरण्यकश्यप से कोई बड़े नहीं है। एक साधारण जीव होकर अपने आप को भगवान मानना यह आसुरी शक्ति का प्रभाव है। जीव जीव है, भगवान भगवान है, परंतु हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहते हैं कि मैं भगवान हूं, विष्णु भगवान नहीं है। और यह विष्णु को भगवान मान रहा है, इसे मार डालो। आदेश दे दिया, कैसे मारे? कहा के बड़े बड़े हाथियों को बुलाओ और हाथियों के नीचे कुचल दो। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उनके अनुचर प्रहलाद को लेकर गए और बड़े बड़े दिग्गज, संसार के साधारण हाथी नहीं, बड़े बड़े दिग्गज हाथी एक स्थान पर थे, वहां पर प्रहलाद को छोड़ दिया गया और वह हाथी दौड़कर प्रहलाद के ऊपर अपना पांव रखने के लिए आते थे। परंतु वह हाथी जैसे ही प्रहलाद के पास आते थे, प्रहलाद के पास आते ही वह हाथी पानी पानी हो जाते थे, प्रहलाद को स्पर्श नहीं कर सकते थे। हाथियों के द्वारा मारने का प्रयास, परंतु प्रहलाद नहीं मिला, मरा। दंद सुकेश्च, तब हिरण्यकश्यप ने कहा एक काम करो, सर्प से भरे हुए कमरे में बंद कर दो। एक कमरे में बहुत सारे सर्प, जहरीले सर्प। भागवत में तो नहीं, परंतु विष्णु पुराण में यह कथा है। एक से एक सर्प, जहरीले सर्प उस कमरे में थे, और प्रहलाद को उस कमरे में रखा गया। वह कमरा बाहर से बंद किया गया और सर्प को आदेश दिया गया था इसे मारना है। वह सभी सर्प आकर प्रहलाद को जोर जोर से डंक मारते थे। अनेकों बार प्रहलाद को डंक मारे। विष्णु पुराण में वर्णन है, वह सर्प कहने लगे कि प्रहलाद को डंक मारते मारते हमारे दांत टूट गए, हमारी मणि निकल गई, हम थक गए, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा है, न जाने इसकी कौन रक्षा कर रहा है, कोई नहीं मार पाया। तत्पश्चात अभी चारा अवपात ने हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, एक काम करो, इस प्रहलाद को पर्वत के शिखर के ऊपर लेकर जाओ और पर्वत की ऊंचाई से इसे फेंक दो। प्रहलाद को पर्वत के शिखर पर लेकर गए और पर्वत के शिखर से उस हिरण्यकश्यप के अनुचरों ने प्रहलाद को फेंक दिया। और अब तो यह निश्चित हो गया कि प्रहलाद मर जाएगा। वे अनुचर हिरण्यकश्यप के पास आए, सरकार हमने प्रहलाद को फेंक दिया है, आप निश्चिंत रहिए। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, चाहे पहाड़ से फेंका जाए, चाहे आसमान से फेंका जाए, यदि वह कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेरी होई। ये हिरण्यकश्यप की बात छोड़ दीजिए, पूरा संसार भी यदि कृष्ण के भक्त का वेरी हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पहाड़ से फेंका, परंतु तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रहलाद को अपने फूल जैसे हाथों में ले लिया। यहां हिरण्यकश्यप निश्चिंत हो गया था। 3 दिन के बाद प्रहलाद महाराज ने आकर बेल बजाया, पिताजी मैं आ गया। हिरण्यकश्यप टेंशन में, इसे बार बार मारने का प्रयास, परंतु मर नहीं रहा। तत्पश्चात कृत्या के द्वारा अभी चारा अवपात ने हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, एक काम करो, कृत्या को उत्पन्न करो। तो वहां पर शंड और अमरक ने मिलकर एक कृत्या को उत्पन्न किया, राक्षसी को, और वह कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ती हुई प्रहलाद महाराज के पेट में उस त्रिशूल को मारने गई। जैसे ही वह कृत्या ने प्रहलाद महाराज के पेट पर वह त्रिशूल मारा, वह त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए। तब कृत्या ने सोचा कि ये प्रहलाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, फिर मुझे मारने को क्यों कहा गया। वास्तव में ये प्रहलाद नहीं, ये दोनों शंड और अमरक ये मरने के पात्र हैं। तुरंत वह कृत्या का मन बदला और शंड और अमरक को मारने लगी। जिसने कृत्या को उत्पन्न किया था उसी को कृत्या ने मार डाला। फिर आगे बहुत सुंदर कथा है। प्रहलाद महाराज ने देखा कि शंड और अमरक मर गए हैं, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रार्थना की और अपने गुरु को जीवित कर दिया। जिस गुरु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था उनको प्रहलाद ने जीवित कर दिया। यह है भक्तों का स्वभाव, वैष्णव का स्वभाव। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने सोचा कि बार बार प्रयास करने के बाद भी यह नहीं मरता है। तब हिरण्यकश्यप ने जो भोजन बना रहे थे उनको भोजन में विष डालने के लिए कहा, कहा कि विष खिला दो इसे। बहुत सुंदर भोजन बनाया और उसमें विष मिला दिया, और वह विष युक्त भोजन प्रहलाद को दिया गया। प्रहलाद को पता था इसमें विष है, परंतु भगवान की भक्ति में लीन है, और उस समय प्रहलाद भगवान का नाम लेकर उस विष युक्त भोजन को खा लिए। वह विष प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। केवल प्रहलाद ही नहीं, इस संसार में अनेक लोग भगवान के भक्त को मारना चाहते हैं। हमारे मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई, जिनको विष दिया गया था, परंतु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल का नाम लेकर मीराबाई ने विष का पान किया, और विष मीराबाई का कुछ नहीं बिगाड़ सका। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी,
लगन मेरा हो गई मगन। वो तो
मानो अमृत पिया
ने विष दिया, मानो अमृत पिया
राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया
विष दिया, मानो अमृत पिया।
मेरा सागर में सरिता आसमान लगी,
मेरा सागर में सरिता आसमान लगी,
मेरा सागर में सरिता आसमान लगी,
मेरा सागर में सरिता आसमान लगी।
दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे,
दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे,
दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे,
दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे।
मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी।
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी,
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में
पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी।
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो इस प्रकार भगवान के भक्तों को यदि विष भी दिया जाए, गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई, गरल भी विष भी अमृत बन जाता है यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते। शिवजी ने भी विष पिया था समुद्र मंथन में, संतों का कहना है रा बोलकर अपना मुख खोला और विष पीकर म बोल दिया, मुख बंद कर दिया, उस राम नाम के प्रभाव से वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद महाराज को विष दिया गया परंतु वह विष उसे कुछ नहीं कर पाया। तत्पश्चात पुराणों में कथा है, होली का आई थी हिरण्यकश्यपु को कहा, मुझे संतों द्वारा वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, इसलिए आप एक काम कीजिए, चिता बनाइए और प्रहलाद को मेरे गोद में बिठा दीजिए, चिता पर आग लगाइए, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। होलिका ने जैसे कहा वैसा किया गया, चिता बनाकर प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठाया और उस चिता पर आग लगाई, परंतु अग्नि भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वह आग लगी और जिस होलिका को ऋषि मुनियों के द्वारा वरदान था वह वरदान फेल हो गया, वह होलिका जलकर राख हुई हो गई और प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका याद कर रही है ऋषि मुनियों को कि आपने मुझे वरदान दिया था कि अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। तब ऋषि मुनियों ने इतना ही कहा कि होलिके, हमने तुम्हें वरदान दिया था अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी, परंतु यह वरदान किसी कृष्ण के भक्त को जलाने के लिए नहीं दिया था, तुम्हारी रक्षा के लिए दिया था। इस प्रकार सदैव प्रहलाद की विजय होती रही। और अब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु अंतिम प्रयास करता है। हिरण्यकश्यपु आदेश देता है, एक काम कीजिए, इस प्रहलाद के साथ एक बहुत बड़ा पत्थर बांध दिए और बीच महासागर में जाकर इसे डुबा दीजिए, समुद्र की गहराई में चला जाएगा और फिर इसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत डालकर इसे गाड़ दीजिए ताकि वह वापस ना आ पाए। प्रहलाद महाराज को लेकर गए, उनके शरीर के साथ पत्थर बांधा गया, बीच समुद्र में महासागर में डुबाया गया और उसके ऊपर बहुत सारे पहाड़ पत्थर पर्वत डाले गए। प्रहलाद महाराज बीच महासागर में फंसे हैं, दब गए हैं पहाड़ों के नीचे और उस अवस्था में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे हैं। एक भक्त किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं भूलता है। अब तक प्रहलाद महाराज के ऊपर अनेक विपत्ति आई, भगवान को याद नहीं किया, क्योंकि भगवान को याद करें उनके पहले ही भगवान इनकी रक्षा करते थे। परंतु इस विपत्ति में प्रहलाद भगवान को याद करते हैं, प्रभु मैं बहुत विषम परिस्थिति में फंसा हूं, यहां पर आपका भजन नहीं हो सकता है, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। बीच महासागर में अनेक पहाड़ पर्वतों के नीचे प्रहलाद दबे हुए हैं और उस समय जैसे ही प्रहलाद ने स्तुति की, नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, तुरंत भगवान श्री विष्णु प्रहलाद महाराज के शरीर के अंदर प्रकट हुए, एक की भावना हुई और प्रहलाद में इतनी शक्ति बढ़ी। सबसे पहले उस शक्ति के माध्यम से प्रहलाद ने अपने बंधन को तोड़ दिया और जितने पहाड़ और पर्वत से दबे थे दोनों हाथ ऊपर करते ही सारे पहाड़ और पर्वत टूट फूट गए और उस समय प्रहलाद महासागर से बाहर निकले और समुद्र की सपाटी के ऊपर चलते हुए प्रहलाद महाराज अपने घर पर वापस आए। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को देखा, हिरण्यकश्यपु अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर चिंतित हो गए। अनेक प्रयास के बाद भी प्रहलाद का वध नहीं हो रहा है, बहुत चिंतित है हिरण्यकश्यपु। तब शंड और अमर हिरण्यकश्यपु को कहते हैं, महाराज आप इतने प्रतापशाली हो, जीते त्वे केन जगत त्रयम विभो, आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया है, संसार के समस्त लोग आपके चरणों में गिर जाते हैं पर आप एक 5 साल के बालक के कारण चिंतित हो, आप चिंता मत करो, आपके गुरु शुक्राचार्य जो हमारे पिताजी हैं वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, वे आएंगे और इसका उपाय बताएंगे, तब तक हम प्रहलाद को गुरुकुल में लेकर चले जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। इतना कह के शंड और अमर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर जाते हैं और शंड और अमर प्रहलाद को अब राजनीति की शिक्षा, दावपेच, युद्ध ये सब सिखाते हैं। एक दिन की बात, शंड और अमर अपना गृह कार्य करने के लिए गुरुकुल से कुछ घंटे के लिए बाहर गए थे और उस समय शंड और अमर सभी विद्यार्थी को, सभी बालकों को कहकर गए कि अब ये फ्री पीरियड चल रहा है, आप लोगों को खेलना है खेलो, पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो। शंड अमर चले गए, गुरुजी चले गए और सभी बालक गुरुकुल में खेलने लगे। परंतु कल आपने सुना कि प्रहलाद खेलने में कभी ध्यान नहीं देते थे, प्रहलाद की रुचि भगवान की भक्ति में थी। सभी बालक खेल रहे थे और उस समय प्रहलाद एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर सभी बालकों को बुलाते हैं, हे मेरे मित्रों, हे मेरे सहपाठी बालकों, आप सब यहां पर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। और प्रहलाद अपने गुरुकुल में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी थे, इसलिए उनकी बात सब लोग मानते थे। प्रहलाद की बात को सुनकर सभी बच्चे अपने अपने खेल को छोड़कर प्रहलाद के पास आए और प्रहलाद ने कहा, देखो आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सब लोग नीचे बैठ गए आपकी तरह, सब बालक बैठ गए और प्रहलाद महाराज बैठ गए, और बैठकर प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। 5 साल का बालक है। और प्रहलाद महाराज ने सबसे पहली बात यह कही, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। हे मेरे प्रिय मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ ज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान, प्राज्ञ माने पूरा पूरा बुद्धिमान। हे मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह कुमार आचरित, वह कुमार अवस्था से ही धर्मान आचरित, धर्म का आचरण करता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, ये उम्र खेलने कूदने की नहीं है, यह जो उम्र है भगवान की भक्ति करने की उम्र है। देखिए बालकों के लिए बहुत सुंदर उपदेश है, यह उपदेश देने वाला 5 साल का बालक और सुनने वाले भी 4, 5 या 6, 7, 10 वर्ष के बालक है। क्या कर रहे हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों बालकों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कुमार आचरित कुमार अवस्था से ही कीजिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। वास्तव में ये मनुष्य शरीर 84 लाख के चक्कर काटने के बाद प्राप्त होता है, इसलिए इसे बहुत दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और यह दुर्लभ मनुष्य जीवन करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद 84 लाख की योनि काटने के बाद मिलता है, और मिलने के बाद भी न ध्रुवम, ये ध्रुवम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य बने हैं तो बस अमर हो गए, अध्रुवम, कभी भी हम मर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भी, कल भी, 10 दिन के बाद भी, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने में राह नहीं देखनी चाहिए, आज और अभी से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए कुमार अवस्था, ये बचपन अवस्था बहुत श्रेष्ठ है। यता ही पुरुषेस्य विष्णु पादोपसर्पणम्, भगवान विष्णु की भक्ति करना यही हमारा सर्वोच्च कार्य होना चाहिए। तब मानो प्रहलाद महाराज के मित्रों में से किसी ने कहा, प्रहलाद तुम कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, यदि हम भक्ति करेंगे तो पढ़ लिखकर ऑफिस में और नौकरी कौन करेगा? भक्ति करके हम सुखी कैसे हो पाएंगे? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखम ऐन्द्रिकम देत्या देह योगी न देही नाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथो दुखम यत्नता। बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज सैद्धांतिक बात बताते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में प्रायः सब लोग सुख ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति को सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे नसीब में सुख लिखा है तो नहीं भी ढूंढेंगे फिर भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रहलाद महाराज सीधा दृष्टांत देते हैं, यथा दुखम यत्नत। बोले आप दुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है? इस संसार में कोई व्यक्ति चाहता है कि आज मुझे दुखी होना है इसलिए ये करूंगा? नहीं, दुखी होने के लिए हम कभी भी प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी दुख आ जाता है कि नहीं है? हमारा प्रयास दुखी होने का नहीं है, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। तो जैसे न चाहते हुए भी बिना प्रयास किए दुख हमारे जीवन में आ जाता है, वैसे ही बिना प्रयास किए सुख आ जाएगा। क्यों? ठीक है ना? जैसे बिना प्रयास किए दुख मिलता है हमें, वैसे बिना प्रयास किए सुख मिलेगा। इसलिए सुख के लिए रात दिन दौड़ना नहीं चाहिए, प्रयास होना चाहिए भक्ति करने के। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे नसीब में लिखा होगा तो हम भक्ति करेंगे। हम किसी को कहते हैं आप भक्ति कीजिए, माला जपिए, तो कहते हैं आपके नसीब में तो भक्ति लिखी है, हमारे नसीब में तो भक्ति नहीं है, हमारे नसीब में मात्र खेतों में काम करना लिखा है। देखिए, ये भक्ति किसी के नसीब की बात नहीं है, भक्ति स्वतंत्र धर्म है, भक्ति कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फलाने के नसीब में भक्ति है वही कर सकता है, नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। नसीब में सुख दुख मान अपमान, धन गाड़ी बंगला पति पत्नी बच्चे, ये सब नसीब से मिलते हैं, परंतु भक्ति नसीब से नहीं। भक्ति तो सबको भगवान की कृपा से मिल रही है, अब करना नहीं करना आपके हाथों में। आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि भोजन की थाली मेरे पास है, हमारे नसीब में होगा तो निवाला मुख में चला जाएगा, वहां तो प्रयास करते हो खाने का, भोजन करने के लिए प्रयास करते हो, वहां आप नसीब पर छोड़ो, नसीब में होगा तो ये रोटी उठकर आ जाएगी मुंह में, वहां तो हम प्रयास करते हैं। और भक्ति करने में कोई प्रयास नहीं, कहते हैं हमारे नसीब में जब लिखे होगी तब हम भक्ति करेंगे। भक्ति करनी पड़ती है, माला को हाथ में लेनी पड़ती है, भगवान का नाम जपना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज सुंदर बात कहते हैं, जैसे दुखी होने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते हैं फिर भी दुख आ जाते हैं, वैसे बिना मेहनत किए सुख आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं, सत्य घटना। एक बार एक गुरुजी इसी प्रकार का प्रवचन कर रहे थे और गुरुजी ने प्रवचन में कहा कि जो नसीब में लिखा है वो होना है, यदि आपके नसीब में सुख लिखा है तो सुख आएगा बिना मेहनत किए, दुख लिखा है दुख आएगा। ऐसा प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले गुरुजी कल दोपहर को मुझे भोजन में क्या मिलेगा, मेरे नसीब में क्या लिखा है? गुरुजी ने कहा कि कल दोपहर को आपके नसीब में भोजन में खीर खाना लिखा है। अब कुछ चेले ऐसे होते हैं, सोचा कि गुरुजी को झूठ ठहरा दूंगा। बोले कल मैं घर पे रहूंगा तो खीर मिलेगी ना, कल मैं जंगल में भाग जाऊंगा और फिर दूसरे दिन गुरुजी को कहूंगा गुरुजी आप झूठ बोलते हैं। कुछ लोग इसी के लिए कथा में आते हैं कि ये कहां गड़बड़ कर रहे हैं, कहां मिस्टेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए। कहा कि कल दोपहर को तुम्हारे नसीब में खीर खाना लिखा है। उसने प्लान बना लिया, कल सुबह सुबह 3 बजे जाकर जंगल में चला जाऊंगा और निर्जला उपवास करूंगा। वह शिष्य गया जंगल में और जंगल में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। लेकिन उसी समय देव योग गाय और बकरी चराने वाले उसी स्थान से गुजर रहे थे और कहीं दूर से आ रहे थे, चलते चलते थक गए। सोचा कि अब बहुत भूख लगी है, बहुत बड़ा वटवृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाला और ये वही वृक्ष था जिसके ऊपर ये चढ़कर बैठा था। बैठे, बोले भूख लगी है क्या किया जाए? कहा हमारे पास चावल और शक्कर है, एक काम करते हैं, गाय को दो देते हैं और खीर बनाकर खाते हैं। गाय का दूध पात्र में डाला, चावल डाला, शक्कर डाला और उसको गर्म करने के लिए उसी पेड़ के नीचे चूल्हा बना दिया और खीर पक रही है और ऊपर बैठे बैठे सोच रहा है कि अरे यार जंगल में आया तो यहां खीर, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो यहां पर मजेदार खीर पक रही है, उसी समय एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और खबर दी कि इसी रास्ते से डाकुओं की टोली निकलने वाली है। और पहले तो लोगों का धन ये गाय और बकरी होते थे, सोचा डाकू आ रहे हैं, ये हमारा गोधन लूटकर चले जाएंगे, चलो भागो यहां से। बोले खीर पक रही है, अरे यह गोधन बचा तो खीर तो हजारों बार खाएंगे, छोड़ो खीर को और अपना अपना सामान लेकर पशुओं को लेकर भागो यहां से। खीर का पात्र वहीं पर पक रहा है और ये लोग अपना सारा सामान लेकर भाग गए। और कुछ समय के बाद डाकुओं की टोली आई घोड़े के ऊपर सवार होकर, आए दौड़ते दौड़ते आए और देखा कि उस वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर खीर पक रही है। डाकू का सरदार सबको रुका दिया और सरदार घोड़े से नीचे उतरा, कहा वाह आज तो हम खीर खाएंगे। और सरदार खीर खाने गया, तुरंत सरदार का जो अनुचर था रोक दिया, सरदार रुकिए, आप जानते नहीं हो, यहां पर किसी को पता चल गया होगा हम आने वाले हैं, इसलिए किसी ने खीर में जहर मिला दिया है और ये प्लान, ये साजिश है कि हम सब लोग खीर खाएंगे और मर जाएंगे। तब सरदार ने कहा ये काम करने वाला है कौन, ढूंढो उसे यहां, ये जहर वाली खीर कौन पका रहा है। बोला ढूंढो यही कहीं होगा। सब लोग ढूंढने लगे और वह ऊपर बैठा था, सब लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते किसी की नजर उस पेड़ के ऊपर गई, ऊपर छिप कर बैठा था, सरदार मिल गया। दो तीन जन ऊपर चढ़े और जबरदस्ती घसीट कर उसे नीचे उतारा। सरदार ने कहा सच सच बोल, तूने ही इसमें जहर मिलाया है। बोले नहीं मैंने जहर नहीं मिलाया है। अच्छा जहर नहीं मिलाया है तो चल पहले तू खीर को खा। बोले मैं खीर तो नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा नक्की इसी ने ही जहर मिलाया है, ना क्यों बोल रहा है। बोले मैं खीर नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। परंतु सरदार के मन में विश्वास हो गया कि इसने जहर मिलाया है, जबरदस्ती उसके हाथ और पांव पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में खीर डाला गया। दूसरे दिन अपने गुरु के पास आया और आकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, गुरुजी आप सच कह रहे थे कि नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, यदि नसीब में खीर खाना लिखा है तो वो मिल ही जाती है। प्रहलाद महाराज इसी बात को कहते हैं, प्राय इस संसार में सब लोग सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं परंतु नसीब में जितना सुख मिलता है उतना ही मिलता है, इसलिए तत् प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्ययः परम। इसलिए अपनी यह बहुत मूल्यवान आयु को सुखी होने के लिए ही मात्र प्रयास नहीं करना चाहिए। न तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम्। भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण का चरण शरण ग्रहण करके उनकी प्राप्ति करने का प्रयास होना चाहिए। तब मानो प्रहलाद महाराज के जो मित्र सुन रहे हैं बच्चे, प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद अब तो बहुत लंबी उम्र बाकी है, ये सब कृष्ण की भक्ति करना अभी से क्यों कह रहे हो। प्रहलाद ने कहा कुछ बाकी नहीं है। प्रहलाद महाराज गिनाते हैं पुंसो वर्ष शतम आयु। मनुष्य का जीवन कितना होता है, 100 साल का। 100 साल भी आज कोई जीता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल लोग जीते हैं। मानो यदि हम गिनती करें 80 साल की किसी की आयु है, 80 साल यदि किसी की आयु है तो व्यक्ति रात को सोता है, दिन को काम करता है, 12 घंटा सोना 12 घंटा काम करना। यदि 80 साल की आयु है, रात को सोता है दिन को जगता है, तो मानो आधा जीवन तो उसका सोने में चला गया, क्योंकि 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, रात सोने में बीत जाती है। तो 80 साल की आयु है तो 40 साल सोने में चला गया, बचा कितना? 40 साल। देखिए प्रहलाद महाराज गिनती करा रहे हैं, और उस 40 साल में बचपन के जो 20 साल होते हैं वो तो खेलने कूदने में चले जाते हैं, 20 साल तक किसी को ज्ञान नहीं होता है। आज के बालक तो मानो बुद्धिमान हो तो 15 साल खेलने कूदने में चले जाते हैं, बचे कितने? 25 साल। और बुढ़ापे के जो 20 साल हैं वो तो बहुत कष्टदायी होते हैं। दृष्टि नश्यते, बेचारा देख नहीं पाता है, न सुन पाता है, न खा पाता है, नकली दांत होते हैं, अपनी शक्ति से लेटरिन पेशाब करने चला जाए तो वो बूढ़ा भाग्यशाली माना जाता है। 20 साल बुढ़ापे में चला जाता है, 80 साल की आयु, 40 साल सोने में, 40 साल की 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, इसलिए 40 साल सोने में चले जाते हैं, 40 साल बचते हैं। उस 40 साल में से 15 साल बचपन में, 20 साल बुढ़ापे में, बचे कितने? 5 साल। उस 5 साल में विवाह करना है, विवाह के लिए धन कमाना है, बच्चे करना है, बच्चे के बच्चे, उनका विवाह, ये वो, अब समय कहां रहा भजन करने का, बताइए। इसलिए प्रहलाद कहते हैं अभी से भगवान की भक्ति कोमार आचरित अभी से ही कर लेनी चाहिए। तो कुछ बालकों ने कहा, नहीं प्रहलाद, हम शादी करेंगे और शादी करने के बाद भक्ति करेंगे। प्रहलाद ने कहा, हो ही नहीं सकता है, शादी के बाद भक्ति हो ही नहीं सकता है। कैसे? प्रहलाद कहते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहत्सु तत्स्नेह सीत शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। शादी के बाद भक्ति नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जब आपकी शादी होगी और वह नई नवेली दुल्हन घर पर आएगी, कुछ शर्माती होगी, धीरे धीरे चलती होगी, और आप पानी मांगोगे तो दूध का ग्लास लाकर देगी। होता है विवाह जब होता है तो शुरू शुरू में, लेकिन शुरू शुरू में, बाद में तो आप सब जानते हैं क्या होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के पहले साल पति बोलता है और पत्नी सुनती है, विवाह के पहले साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, विवाह के दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, मेरे लिए ये लेकर आना, वो लेकर आना, ये कर। और विवाह के तीसरे साल पति और पत्नी बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, झगड़ा, इसमें भी ताली बजा रहे, लगता है आपका अनुभव है, नाथालाल का अनुभव है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विवाह करके भगवान याद नहीं आएंगे। कहते हैं वह नवी नवेली दुल्हन आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, और उसमें भी एकांत कमरे में बैठे होंगे और बहुत मधुर वाणी से बोलती होगी, और पानी मांगो के दूध का ग्लास लाएगी। ऐसी पत्नी के साथ आप बैठे रहोगे, कब कैसे भगवान याद आ सकते हैं? कभी नहीं आए। और पत्नी के बाद फिर बच्चे होने हैं, फिर बच्चे होंगे, फिर वह बच्चे तोतली बोली में मम्मी और पापा हैं? जब बोलेंगे तब तो भगवान याद आ ही नहीं सकते हैं। होता है ना, बच्चे में लोग बहुत आसक्त होते हैं। अपना बच्चा यदि कंधे पर बैठा है और पेशाब कर दिया तो गंगा जल जितना आनंद महसूस करते हैं, कोई घृणा नहीं होती है। और दूसरे का बच्चा रास्ते में पेशाब कर, अरे छी 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 गंदा गंदा, भगाओ इसे, अपना अपना होता है ना। वो बच्चे आएंगे मम्मी पापा तोतली बोली में और उसमें भी कंधे पे और बैठकर कान खुजाएंगे तब तो आहा कहां भगवान याद आएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं विवाह करेंगे फिर भगवान याद नहीं आएंगे, और विवाह के बाद बच्चे, और विवाह के पहले तो व्यक्ति एक अकेला होता है लेकिन जैसे ही विवाह करता है तो फिर अपनी पत्नी के जो माता पिता है उसके साथ भी संबंध जुड़ जाता है, फिर तो मम्मी जी लग जाता है पीछे, चाचा जी मामा जी मारवाड़ी में सा लगाते हैं। तो जो भी है अपने सगे चाचा के विवाह में आप जाओगे नहीं जाओगे चलेगा, परंतु पत्नी के चाचा के वहां नहीं जाओगे तो खतरा। अपने भाई के विवाह में नहीं जा पाओगे तो एक बार चल जाता है, परंतु साले के विवाह में नहीं जाओगे तो क्या होगा। फिर दो परिवार के साथ संबंध हो जाता है, व्यक्ति फिर फंसते जाता है, और उसमें भी लड़के होते हैं। लड़के आज एक दो तो कोई करते नहीं है, लाइन लगा देते हैं, दो तीन लड़के चार पांच लड़की, और फिर उनको बड़ा करना पढ़ाना लिखाना भोजन कराना, फिर उनका विवाह, फिर लड़की जिस घर पर गई है वहां सुखी तो होगी। बस इस प्रकार से अपनी ही बनाई हुई जंजाल में फंस जाता है। कैसे दृष्टांत देते हैं, त्यजेत कोशस्तु देहे मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्त जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्यत दुरंत मोह। जैसे रेशम का कीड़ा, आपने शायद पढ़ा होगा, रेशम का कीड़ा अपने ही लार ग्रंथि से अपना घर बनाता है, और घर बनाना आजू बाजू में घर बनाना शुरू करता है, करते 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 वह रेशम का कीड़ा अपना घर ऐसा बना देता है कि अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। फिर उसे बाहर निकलना होता है, तड़पता है, तड़प तड़प कर मर जाता है, परंतु बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही इस संसार में जो लोग विवाह करते हैं अपने ही बनाए हुए गृह में, ये विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, हम लोग अपनी ही बुद्धि से अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, पत्नी बच्चे, फिर कहते हैं हम तो फंसे हुए हैं। हम लोग कहते हैं आप भक्ति कीजिए भगवान का नाम लीजिए, हम लोग फंसे हुए हैं। तो क्या हमने कहा था आपको फंसने के लिए? हम लोग हमारी बुद्धि से यह कार्य कर बैठते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन इस घर की फजीहत में फंस जाता है, अंत में मर जाता है। मानो कुछ लोग कहे तो क्या कुटुंब का भरण पोषण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पत्नी बच्चों का भरण पोषण होना चाहिए, परंतु उनके साथ साथ भगवान की भक्ति होनी चाहिए। मात्र कुटुंब का भरण पोषण करते रहोगे तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब पोषाय वियन निजायु न बुद्धते अर्थ विहतम प्रमत्त। एक व्यक्ति अपना कुटुंब का भरण पोषण करने में अपनी सारी आयु गवा देता है, मिलता क्या है? कुछ नहीं। एक पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रात दिन गधे की तरह मेहनत करता है, लेकिन फिर भी पत्नी एक बार भी यह नहीं कहती है बस अब बहुत हो गया, अब आप मेहनत मत कीजिए। रात दिन ये पति मेहनत करता है, पत्नी यही कहती तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो। बच्चे भी कहते हैं तुम्हारे पापा हमारे पापा से अच्छा तो बाजू वाले पापा। रात दिन मेहनत करने के बाद, और एक व्यक्ति अपने कुटुंब की कितनी भी सेवा करे, वह सभी कुटुंब वाले मिलकर भी उस व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, मरने से नहीं बचा सकते हैं। आप देखिए एक से एक आए इस संसार में, सहस्त्र बाहु दश वदन आदनी तो बचे न काल बलीते। एक से एक राजा महाराजा, भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा, एक नहीं हजारों पत्नियां हजारों बच्चे थे, परंतु उस ग्राह रूपी काल रूपी ग्राह के मुख में वो फंस गया। ये हजारों पत्नी और बच्चे मिलकर भी उसे बचा नहीं पाए। कितना भी धन संपत्ति होगा नहीं बचा सकते, बचाने वाले एकमात्र भगवान हैं। इसलिए कुटुंब का भरण पोषण करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश प्रवचन कर रहे थे, उतने में षंड और अमरक अपने घर से वापस आ गए और आकर देखा कि प्रहलाद अब तक तो स्वयं भक्ति करता था, अब ये भक्ति का प्रचार करने लगा है। और दोनों डर गए, यदि हिरण्यकश्यपु को यह बात पता चल गई तो हमको काट डालेगा, इसलिए हम लोग ही जाकर हिरण्यकश्यपु को बता दें। तब षंड और अमरक ये दोनों हिरण्यकश्यपु के पास आए और हिरण्यकश्यपु के पास आकर उनको बताते हैं। आइए अब आगे की कथा सूरदास जी के पद से हम श्रवण करें। सूरदास जी ने बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज की इस कथा को गाया है और भगवान नरसिंह देव का प्रकट कराया है। आइए हम भी अब सूरदास जी के पद से। षंड और अमर कहते हैं,
हम तो बहुत बाती पचिहारे, 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 इन तो
पास आए हैं और हिरण्यकश्यपु के पास आकर कहते हैं, सरकार हम लोग हार गए हैं, हमने प्रहलाद को बहुत समझाया, अब तक तो स्वयं विष्णु का नाम लेता था, अब तो विष्णु के नाम का प्रचार करने लगा है, हम तो हार गए हैं, इसलिए ये रहा आपका लड़का, आप इनका जो करना है करो, हम इसे नहीं रख सकते। तब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कहता है, जिसके कारण तेरी रक्षा होती है,
प्रहलाद तुझे कौन बचाता है, मैंने तुझे मारने का इतना प्रयास किया, बार बार तेरी रक्षा कौन करता है। से कहते हैं पिताजी मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम,
मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम,
मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम,
मंत्र जंत्र
घट घट में जाको विश्राम,
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 जहां यही जानना चाहते हो मेरी रक्षा कौन करता है। पिताजी मैं भगवान विष्णु का नाम जपता हूं और भगवान विष्णु ही मेरी रक्षा करते हैं, तो भगवान विष्णु ही बारंबार मुझे बचाते हैं। तब हिरण्यकश्यपु पूछता है, अच्छा ये विष्णु तेरी रक्षा करता है, कहां है तेरा विष्णु? कहो कहां सो मोहि बताई,
कहो कहां सो मोहि बताई,
ना करूं तेरो जिया अब जाई,
ना करूं तेरो जिया सब जाई।
प्रहलाद बता तेरा विष्णु कहां है, यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब प्रहलाद कहते हैं पिताजी मेरे विष्णु अत्र तत्र सर्वत्र, मेरे विष्णु सभी जगह पर है, यहां भी है वहां भी है सब जगह पर है। तब हिरण्यकश्यपु की नजर एक खंभे की ओर जाती है और खंबा देखा कर हिरण्यकश्यपु कहता है, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर कहता है, आज मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं, आज मैं देखूंगा तेरे भगवान में कितनी शक्ति है, क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? तब प्रहलाद कहते हैं, हां पिताजी मेरे भगवान सभी जगह पर है, मेरे प्रभु का नाम है विष्णु और विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्याप्त, इति विष्णु जो सभी जगह पर हो उसे विष्णु कहते हैं, और जो सभी जगह पर है वे इस खंभे में भी हैं। वास्तव में भगवान उस खंभे में नहीं थे, परंतु भक्त राज प्रहलाद के इस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान उस खंभे में आए हैं। जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंभे में मेरे भगवान है, उसी समय उस खंभे से भयंकर आवाज हुआ, और उस आवाज से मानो ब्रह्मांड फट गया हो। ब्रह्मा आदि देवताओं को लगा के इस संसार का प्रलय होने वाला है। उस समय देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए, ऋषि मुनियों के बुझे हुए यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस धड़कते से खंभे से प्रकट हो गए। भगवान नरसिंहदेव का अद्भुत शरीर है, तपाए हुए सोने के समान प्रचंड आंखें, विकराल दांत, तरवर तलवार के समान लपलपाती हुई जिह्वा है। भगवान नरसिंहदेव के कान खड़े हैं, पहाड़ की गुफा के समान नासिका, भयंकर मुख, विशाल छाती, कमर बदली, रोंगटे चंद्रमा के समान चमकते हुए, सेना के समान फैली हुई सैकड़ों भुजाएं हैं। भगवान नरसिंहदेव के नाखून अस्त्र शस्त्र के समान आकाश को छूने वाला भगवान का शरीर, गर्दन के बाल, भगवान नरसिंहदेव के गर्दन के बाल हिलने से आकाश तितर बितर हो गया। भगवान नरसिंहदेव के सांस के धक्के से समुद्र उद्विग्न होने लगा। भगवान नरसिंहदेव, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि न तो उसे नर मार सके, न पशु, न अंदर न बाहर, न दिन को न रात को। भगवान श्री विष्णु ने अद्भुत स्वरूप धारण किया और उस समय संध्या का समय देखकर भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को मारना चाहे, उसी समय जैसे गरुड़ एक सर्प को पकड़ता है, जैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जैसे चटाई बनाने वाला चटाई को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का वध हुआ, भक्तराज प्रहलाद की जीत हुई। बोले नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम, नरसिंहात्भिदर्शनं भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। तव कर कमलवरेणकं अद्भुत शिंगं दलिता हिरण्यकशिपो तनुभिंगं, केशवदीता नरहरि
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव,
नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव,
नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय देव का दर्शन करके प्रहलाद महाराज ने जितना लाभ लिया था उतना ही लाभ आज इस गुलर गांव में भगवान की कथा सुनकर हम प्राप्त कर रहे हैं। उन दिनों जहां पर भगवान प्रकट हुए थे और साक्षात अपने नेत्र से भगवान को देखकर जो लाभ प्राप्त हुआ था वही लाभ आज भगवान की कथा सुनकर हमें प्राप्त होता है। वास्तव में यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवत कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन करना। भगवान अपने कथा के द्वारा ही प्रकट होते हैं और कथा के माध्यम से भगवान को प्रकट कराने वाले, इस कथा के आयोजन में सहयोग देने वाले अनेक भक्त हैं। वास्तव में वो भगवान की कृपा पात्र हैं, क्योंकि इस संसार में दान तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस संसार में तपे हुए दुखी जीवों के लिए भगवान की कथा ही सुखी करने वाली है। संसार के तप्त दग्ध जीवों के लिए भगवत कथा ही एकमात्र सुख का साधन है, और ऐसी भगवत कथा किसी को दान देना, भूवि गृणंति ते भूरि दार्जना, वह दान भगवान की कथा का दान इस संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। मैं धन्यवाद देता हूं बन्ना राम जी रेणवा, जो प्रधान जी के नाम से प्रख्यात है, और इसी के साथ हनुमान सिंह जी, मोहन लाल, छोटू सिंह, इंद्र सिंह, उदाराम रेणवा, इस अनेक भक्तों ने तन मन और धन से इस भागवत कथा का आयोजन करने में सहयोग दिया है। वास्तव में ये भक्त भगवान के प्रिय रहेंगे और भगवान की यह भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रहेगी, इनके जीवन में सुख शांति और भगवान की शुद्ध भक्ति आए, ऐसी कामना करते हैं। और हमारी कामना करने से क्या होगा, निश्चित भगवान का आशीर्वाद इन भक्तों के ऊपर है, इसलिए इनके हाथों से इतना सुंदर कार्य हो रहा है। नहीं तो विचार करो भक्तों, धन किसके पास नहीं है, है? वेश्याओं के पास भी धन होता है, परंतु वह धन ऐसे शुभ कार्य में इस्तेमाल नहीं हो सकता। परंतु धन्य है वह भक्त जो अपना धन भगवान को प्रसन्न करने वाली इस भागवत कथा में लगाते हैं। धन्य जिन्होंने यह कथा सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और आइए आज और दो अवतार कराने हैं, क्योंकि फिर कल राम अवतार होगा, और क्योंकि राम के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए कल के दिन में हम केवल राम कथा सुनेंगे और फिर परसों तीन कथा सुनेंगे, तीन अवतार। तो आज वामन अवतार और परशुराम अवतार, ये दोनों की कथा हम 25 मिनट में करेंगे। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। जयदेव गोस्वामी कहते हैं छल यसी विक्रमणे बलि मद भूत वामन पद नक निरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे हरे, हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके तीन पग में बलि महाराज से तीन पग भूमि की याचना की और तीन पग से आपने मात्र दो पग से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। इसे अद्भुत वामन देव आपकी जय हो। भगवान वामन की कथा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में बताई गई है। कथा इस प्रकार से है, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में मन्वंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने जब चाक्षुष मन्वंतर की कथा कही और चाक्षुष मन्वंतर में भगवान का अजित नामक मन्वंतर अवतार हुआ और भगवान अजीत ने इस अवतार में अनेकों रूप धारण किए, समुद्र से अमृत प्रकट कराया और अपने भक्त देवताओं को अमृत का पान कराया। भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया और अमृत का पान करके देवतागण शक्तिशाली हो गए और तब देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध किया। असुरगण परास्त हो गए, ऑलमोस्ट मर गए, फिर से देवता स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। यहां पर सभी असुर रणभूमि में पड़े हैं, बलि महाराज भी रणभूमि पर घायल हो गए, मर गए, जो बलि महाराज असुरों के सरदार थे, सम्राट। उस समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य उस रणभूमि पर आए और सबसे पहले मृत संजीवनी विद्या से अपने यजमान और असुरों के सरदार बलि महाराज को जीवित किए और भी उन असुरों को जीवित किए जिसके अंग नहीं कटे थे। तब बलि महाराज ने शुक्राचार्य के कहने पर भृगुवंशी ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की और भृगुवंशी ब्राह्मणों से शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज से विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। ये यज्ञ बिल्कुल सफल हुआ और इस यज्ञ से तृप्त होकर अग्नि देवता प्रकट हुए और बलि महाराज को युद्ध करने की संपूर्ण सामग्री प्रदान की। इसी के साथ साथ अग्नि देवता ने इंद्र जैसे रथ के ऊपर सवार होते हैं वैसा ही एक रथ और रथ से जुटे हुए घोड़े प्रदान किए। उस विश्वजीत यज्ञ से प्रसन्न होकर बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज को बहुत सुंदर विजयी माला पहनाई। भक्तराज प्रहलाद जिसे विजयी माला पहनाए वह व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं सकता है। इस प्रकार बलि महाराज अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुए, प्रहलाद महाराज के द्वारा विजयी माला पहनी और अपनी सेना को लेकर स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए। धमाधार युद्ध हुआ और युद्ध करके
बलि महाराज ने देवताओं को हरा दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यही कहा कि हे देवताओं, बलि महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न करके आए हैं और प्रहलाद महाराज के द्वारा विजय माला पहनकर आए हैं। इस समय बलि महाराज और असुरों को कोई नहीं हरा सकता है। यदि आपको अपनी जान प्यारी है तो स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ। नसीब में होगा तो स्वर्ग जीवन में फिर कभी मिलेगा। अपनी अपनी रक्षा करो। सभी देवतागण भाग गए और बलि महाराज स्वर्ग के राजा बने। जब बलि महाराज स्वर्ग के राजा बने तो इंद्र की जो माता थी जिसका नाम अदिति था, बलि महाराज की माता का नाम दीति था और इंद्र की मां का नाम अदिति था और ये दोनों कश्यप जी की पत्नी थी। अदिति ने देखा कि मेरी सौत का पुत्र स्वर्ग का राजा बना है और मेरे पुत्र को स्वर्ग से हटा दिया है, इसलिए एक दिन अपने पति के पास गई और अपने पति को कहा कि हे पतिदेव जी, मैं आपसे एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो बलि महाराज के साथ युद्ध करके अपने भाई इंद्र को वापस स्वर्ग का राजा बना दे। कश्यप जी यह सुनकर सबसे पहले दुखी हुए कि यह अदिति को कितनी ईर्ष्या है, परंतु आखिर कश्यप जी एक आदर्श गृहस्थ थे। अपनी पत्नी को डायरेक्ट यह नहीं कहा कि तू ईर्ष्याली हो, ईर्ष्यालु है, तेरे में दोष है, नहीं, क्योंकि यदि पत्नी को डायरेक्ट ऐसा कह दिया जाए तो उसके दिमाग की खिड़की बंद हो जाती है, फिर वो कोई भी बात नहीं समझेगी। इसलिए कश्यप जी बहुत बुद्धिमान थे, सोचा कि इसका इरादा बहुत गलत है, इसकी इच्छा बहुत गलत है, परंतु यदि भगवान की भक्ति में लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। कहा, देवी हां तुम्हें ऐसा पुत्र मिल सकता है लेकिन तुम्हें एक व्रत रहना होगा। कौन सा व्रत? कहा, इस व्रत का नाम है पयो व्रत। पय माने दूध, मात्र दूध पीकर यह व्रत रहना है 10 दिन के लिए। यह व्रत की विधि क्या है? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष से 12 दिन तक मात्र दूध पीना है और उन 12 दिनों में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी है। यदि संभव हो तो अमावस्या के दिन जंगली सुअर के द्वारा खुदी हुई मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर स्नान करना और उस 12 दिन में रोज यज्ञ करना, खीर का भोग लगाना, और यज्ञ का जो भोग बचे वो भक्तों में बांट देना, रोज दो ब्राह्मणों को भोजन कराना, दिन में 3 बार स्नान करना, 12 दिन तक रात को भूमि पर सोना और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक इस व्रत को रखना। त्रयोदशी के दिन पंचामृत के द्वारा भगवान के अर्च विग्रह का अभिषेक करना और उस दिन निसंकोच होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण देवता को दान देना। देखिए भागवत में यह बात आई है कि ब्राह्मणों को दान देते समय निसंकोच होना चाहिए। कुछ लोग दूं या नहीं दूं, कम दूं ज्यादा दूं, पूर्ण श्रद्धा से और हमारी जितनी कैपेसिटी हो उतना ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दान देना, इस प्रकार से यदि यह व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित तुम्हारा पुत्र बलि से युद्ध करके इंद्र को स्वर्ग दिलाएगा। यह व्रत इस संसार में सभी स्त्रियां कर सकती हैं और इस व्रत के द्वारा व्यक्ति की जो भी इच्छा हो पूर्ण हो सकती है। और खास करके जिस स्त्री को एक सुसंस्कृत पुत्र की आवश्यकता है, भक्त पुत्र चाहिए, तो उसे चाहिए कि इस व्रत का पालन करे और भगवान से मांगे कि आप ऐसा पुत्र दो जो आपकी भक्ति करे। अपने पति के कहने पर अदिति ने 12 दिन तक यह व्रत का पालन किया और 12 दिन के दिन तक यह व्रत करने पर 12वें दिन भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में अदिति के सामने प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं, परंतु इस समय असुरों को कोई नहीं जीत सकता है। इस समय असुरों को मैं भी नहीं जीत सकता हूं। क्यों? क्योंकि असुरगण ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण बलि महाराज और अन्य असुरों को कोई नहीं जीत सकता था। इसलिए असुरों के साथ युद्ध तो नहीं हो सकता है, परंतु आपने पयव्रत किया है, मेरी उपासना की है, मेरी भक्ति की है, इसलिए निश्चित मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और युद्ध के द्वारा तो बलि महाराज को हराया नहीं जा सकता है, परंतु आपकी इच्छा है ना कि इंद्र को स्वर्ग मिले, क्योंकि आपने मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं भिखारी बनकर बलि महाराज के पास जाऊंगा और स्वर्ग को मांगूंगा और आपके पुत्र को दे दूंगा। भगवान अपने भक्त के लिए भिखारी बनने के लिए भी तैयार है। अद्भुत प्रसंग है यह। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। भगवान अदिति के गर्भ में आए और भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्याह्न बिल्कुल दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में अदिति के हृदय गर्भ का सहारा लेकर भगवान वामन इस संसार में प्रकट हुए। बोले भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव, वास्तव में इनका नाम उपेंद्र है, उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई, इसलिए उपेंद्र नहीं, परंतु उनका कद बहुत छोटा था, बौने थे, इसलिए इनका नाम वामन हुआ, वामन। और जैसे इस संसार में साधारण बालकों का जन्म होता है वैसे नहीं, जन्म होते ही वे 5 साल के बालक हो गए, कद में बढ़ गए और जन्म होते ही भगवान वामन को पता चला कि वहां पर बलि महाराज ने स्वर्ग प्राप्त किया था इल्लीगली, क्योंकि आपको नीति से यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग का राजा बन सकता है। और बलि महाराज ने तो युद्ध करके स्वर्ग प्राप्त किया था, इसलिए शुक्राचार्य बलि महाराज को अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे और वह अश्वमेघ यज्ञ कराते कराते 99 अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हो गए और अंतिम 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। और यदि वह 100वां अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हो जाए तो फिर इंद्र कभी जीवन में स्वर्ग के राजा नहीं बन सकते। और 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, भगवान वामन को पता चला अब मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, और कहा कि मैं वहां इंद्र के यज्ञशाला में जाना चाहता हूं। उस समय भागवत में वर्णन है, सूर्य देव ने भगवान वामन को गायत्री का उपदेश दिया। देवताओं के राजा बृहस्पति ने यज्ञोपवीत जनोई प्रदान किया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने काले रंग का मृग चर्म दिया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, माता अदिति ने कोपिन और उत्तरीय वस्त्र प्रदान किए, देवताओं ने छत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश प्रदान किया, सरस्वती ने भगवान वामन को रुद्राक्ष की माला पहनाई, धन के देवता कुबेर जी ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया, और जगत माता अन्नपूर्णा देवी ने सर्वप्रथम भिक्षा प्रदान की भगवान वामन को। इस प्रकार ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई और भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ में जा रहे हैं। उस समय बलि महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे, और उस शुरू यज्ञ में भगवान वामन बलि महाराज के द्वार पर आए हैं। द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं और भगवान वामन उस द्वारपाल को कहते हैं, जाओ बलि महाराज को जाकर कहो कि आपके द्वार पर ब्राह्मण आया है। सूरदास जी अपनी भाषा में लिखते हैं, द्वारपाल बलि महाराज को जाकर कहते हैं,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजन आपके द्वार पर एक पंडित आया है।
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
चारों वेद पढ़त मुख यागर,
चारों
पौरी तुम्हारी,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजाईक पंडित पौरी तुम्हारी।
द्वारपाल बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, जहां यज्ञ कर रहे थे वहां वह द्वारपाल आया और कहा, राजन एक पंडित आया है, चारों वेद उसके मुख पर है, चारों वेद को वह जानता है, और वामन वपुधारी कद में बहुत छोटा है परंतु बहुत बुद्धिमान है, ऐसा ब्राह्मण आपके आंगन में आया है।
अपद सुपद पशु भाषा बोले,
अपद सुपद पशु भाषा बोले,
अभिगत अलप हारी, अभिगत यकार
वो जो पंडित आया है वे पक्षियों की भाषा जानता है, मनुष्य की भाषा जानता है, लगभग सभी भाषा को जानता है, और अल्प आहारी त्यागी है, तपस्वी है, और देखने में इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारे नगर के सभी नर नारियां उसे देखकर मोहित हो रही है। उसके शरीर का तेज सूरज के समान है।
अपद सुपद पशु भाषा बुझत है,
अपद सुपद पशु भाषा बुझत है,
अभिगत अलप यहारी,
अभिगत अलप यहारी,
नगर सकल नर नारी सो है,
नगर सकल नारी सो है,
नगर सकल नर नारी सो पौरी तुम्हारी
राजाई को पंडित तोरी तुम्हारी
राजाई को पंडित पौरी तुम्हारी
राजाई को पंडित तोरी तुम्हारी
सुनियान चले बलि
ने जब उस ब्राह्मण का वर्णन किया, इसे देखकर बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, हमारे द्वार पर ब्राह्मण आए हैं और वह भी बाल ब्रह्मचारी। तब तो बलि महाराज अपने यज्ञ से खड़े हो गए और आनंद में भरकर आनंदित होकर बलि महाराज द्वार पर आते हैं और आकर उस ब्राह्मण को कहते हैं,
सुनी सानंद चले बलि राजा,
सुनी आनंद चले बलि राजा,
आहुति यज्ञ विसारी,
आहुति यज्ञ विसारी,
देखी स्वरूप सकल कृष्णा कृति,
देखी स्वरूप सकल कृष्णा कृति,
कीनी चरण जुहारी पंडित पौरी तुम्हारी
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी
राजा
बलि महाराज उस बाल ब्रह्मचारी को मिलने के लिए प्रांगण में आए हैं और आकर कहते हैं,
चलिए मित्र जहां जग बेदी,
चलिए विप्र जहां जग बेदी,
बहुत करी मनुहारी,
बहुत करी मनुहारी,
जो मांगो
देही तुरंत ही
जो मांगो सो देही तुरंत ही।
हे बाल ब्रह्मचारी जी, कृपया करके आप अंदर चलिए, पधारिए। बलि महाराज कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। आपको हीरा चाहिए, रत्न चाहिए या भंडार चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो।
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही,
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही,
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही,
जो मांगो सो दे हूं तुरंत ही।
हीरा रत्न न भंडारी पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी।
जब बलि महाराज ने कहा जो चाहिए वो मांग लो, जब राजा ने कहा कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, तब भगवान वामन कहते हैं कि राजन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलने से दोष लगता है। मुझे न रत्न चाहिए, न भंडार चाहिए, न खजाना चाहिए, सुनिए मुझे क्या चाहिए।
रहू रहू राजा यो नहीं कहिए,
रहू रहू राजा यो नहीं कहिए,
दूषण लागे भारी,
दूषण लागे भारी।
सुनिए मुझे क्या चाहिए।
तीन पग बेली तीन पग बसुदा दे मोको,
तीन पग बसुदा दे मोको,
तीन पग बसुदा दे मोको,
तीन पग बसुदा दे मोको।
सारी पंडित पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी,
राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी।
इस प्रकार भगवान वामन कहते हैं कि केवल तीन पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बलि महाराज ने बहुत कहा, आप इतना ही मांग रहे हो, अरे आप कुछ ज्यादा मांग लो, क्योंकि आने वाले संसार के लोग कहेंगे कि ये बालक को मांगने नहीं आया तो क्या बलि को देने भी नहीं आया। आपको जो चाहिए वो मांग लो। परंतु वह ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, यशवंत ठीक से बैठिए। ब्राह्मण कहते हैं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल तीन पग भूमि चाहिए। तब बलि महाराज तीन पग भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय खड़े होकर शुक्राचार्य आते हैं, बलि महाराज को कहते हैं, बलि महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात विष्णु बालक का रूप लेकर आया है। तुम इसकी बातों में मत आ जाना। परंतु बलि महाराज कहते, नहीं नहीं, मैं इसे तीन वर्ग भूमि दूंगा। शुक्राचार्य ना कह रहे हैं। अंत में बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि यदि यह भगवान विष्णु भी है तब भी मैं इसे भूमि दूंगा, क्योंकि आखिर तो यह संसार भगवान विष्णु का ही तो है। उसी समय बलि महाराज अपने हाथ में पानी लेते हैं और जल लेकर संकल्प करते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, तीन पग भूमि दूंगा। जब संकल्प हो गया तब भगवान वामन अब भूमि को नापना प्रारंभ करते हैं और उस समय भगवान वामन अपना शरीर धीरे 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 बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान का शरीर विशाल होता गया, आए थे छोटे ब्राह्मण बन के, और जब नापने की बात आई तब अपना शरीर लंबा कर रहे हैं। कहते हैं उस भगवान के शरीर में उस समय आकाश में स्थित देवतागण, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, सब राजा के और भगवान के अलौकिक कर्म को देखने के लिए आकाश में आ गए। सब लोग भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। आकाश में एक साथ हजारों धुंधुबिया बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष, किन्नर गान करने लगे। इस उदार शिरोमणि राजा बलि ने बड़ा कठिन कार्य किया है, जो अपने शत्रु को तीन पग भूमि दान करने जा रहा है। सब लोग आकर इसे देखने लगे। उस समय बलि महाराज ने अनंत भगवान का त्रिगुण स्वरूप, जो अद्भुत स्वरूप था, बढ़ने लगा। उसमें पृथ्वी, आकाश, दिशा, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि, ये सब समा गए। इतना विशाल शरीर होता गया। ऋषिगण, आचार्य और समस्त सदस्यों के साथ बलि महाराज ने महान ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के त्रिगुणात्मक शरीर, पंच महाभूत, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अंतकरण और जीवों के साथ समस्त जगत को भगवान के अंदर देखा। तत्पश्चात राजा बलि ने उस विश्व रूप भगवान के अंदर उनके चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जंगा में मरुदगण को देखा। भगवान के विराट रूप में, भगवान के वस्त्र में संध्या, भगवान के गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, भगवान के जंगा स्थान में समस्त असुरगण, नाभि तक आकाश, कोक में सातों समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्र को देखा। भगवान धीरे 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 अपना स्वरूप बढ़ाते जा रहे हैं, इस स्वरूप को विशाल करते जा रहे हैं। भगवान के शरीर हृदय में धर्म स्तन और सत्य वचन, भगवान के मन में चंद्रमा को देखा और वक्षस्थल में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी को देखा। भगवान की भुजाओं में इंद्र इत्यादि अनेक देवताओं को देखा। भगवान के कानों में समस्त दिशाएं, भगवान के मस्तक में स्वर्ग छू रहा था। भगवान की नासिका में वायु देवता को देखा, नेत्र में सूर्य को देखा, मुख में अग्नि दिखाई पड़ी, विराट स्वरूप प्रकट हुआ। धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। उस समय परम पुरुष भगवान में, भगवान की वाणी में वेद दिखने लगा, बहों में विधि और निषेध, ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ दिखाई दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, उनके स्पर्श में काम और वीर्य में जल दिखाई दिया, पीठ में अधर्म, पदन्यास में अग्नि, छाया में मृत्यु, हसी में माया, शरीर में रोम और औषधियों में समूह दिखाई दिया। इस प्रकार भगवान वामन धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते भगवान का विशाल अद्भुत शरीर प्रकट हुआ। भगवान पृथ्वी पर खड़े थे। भगवान श्री वामन ने अब पृथ्वी को नापना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी से सबसे पहले पृथ्वी के नीचे के लोग अतल वितल तलातल पाताल रसातल कर भगवान का चरण चला गया। भगवान ने एक कदम से नीचे के सभी लोगों को नाप लिया। अब भगवान का दूसरा कदम, भगवान श्री वामन अपने दूसरे कदम से पृथ्वी के ऊपर के लोगों को, जन लोग, महर लोग, तप लोग, सिद्ध लोग, ब्रह्म लोग तक भगवान ने समस्त लोगों को नाप लिया। इस प्रकार भगवान वामन ने अपने दो कदम से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, परंतु बलि महाराज के हृदय में प्रसन्नता है। अब भगवान कह रहे हैं, बलि तीन कदम रखने की भूमि मांगी थी, केवल दो कदम नापा है, तीसरा कदम कहां रखूं? तब बलि महाराज कहते हैं, प्रभु प्रभु आप ही बताइए, इस संसार में दान बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है? तब भगवान कहते हैं, बलि इस संसार में दान से बड़ा है दान देने वाला। तब बलि महाराज कहते हैं, प्रभु आपने तो मात्र मेरे दान को नापा है, दान देने वाला बलि आपके सामने खड़ा है, आपका तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब भगवान श्री वामन ने अपना वरद चरण कमल, जो चरण बड़े बड़े योगियों के हृदय में नहीं आता है, बड़े बड़े ध्यानी हजारों वर्षों तक ध्यान करते हैं परंतु भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान के चरण बलि महाराज के मस्तक पर आए। बोले, बलि महाराज की, भगवान वामन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
तो इस प्रकार बैठिए भी कथा बाकी है। इस प्रकार भगवान मामन ने बलि महाराज से स्वर्ग छीन लिया और अपने भाई इंद्र को दे दिया। आगे बहुत सुंदर कथा है। बलि महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। क्षत्रिय रुधिर मये जगद भगत पापम स्नपयसी पयसी शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे जगदीश हे हरे हे केशनी सुदन आपने परशुराम रूप धारण करके क्षत्रिय कुल का विनाश करते हुए खून की नदी को इस जगत में बहाया है, संसार को पवित्र करके लोगों का संताप दूर किया है। हे भृगुपति रूप धारण करने वाले परशुराम जी, आपकी जय हो। छठा अवतार परशुराम जी का, आइए संक्षिप्त में परशुराम जी की कथा का हम श्रवण करें। परशुराम जी का जन्म अद्भुत है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था कुश। राजा कुश के चार पुत्र जिनमें से एक पुत्र का नाम था कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र हुए राजा गादी और गादी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा गादी की पुत्री जिसका नाम सत्यवती था, राजा गादी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ब्रह्मा के पुत्र भृगु भृगु के च्यवन च्यवन के औरव और औरव के रुचिक, ये रुचिक प्रजाओं के पति थे इसलिए उसे रुचिक प्रजापति कहा जाता है। राजा गादी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ कराया। बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। यद्यपि राजा गादी क्षत्रिय थे और रुचिक प्रजापति ब्राह्मण थे। अपनी कन्या सत्यवती का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ कराया। एक समय की बात, रुचिक प्रजापति या रुचिक ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती को संतान की प्राप्ति हो उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। उसी समय रुचिक ऋषि के की सास अर्थात सत्यवती की माता उनके घर पर आई और सत्यवती की माता को और कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने दामाद को कहा कि आप तुम्हारी पत्नी अर्थात मेरी बेटी के लिए संतान प्राप्ति कर रहे हो, यह चरु उत्पन्न कर रहे हो, मुझे भी संतान प्राप्ति करने की इच्छा है। तो कहा सासू जी आप भी बैठ जाइए यज्ञ में। ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी को भी बिठाया, अपनी सास को भी बिठाया, दोनों यज्ञ में बैठे हैं और यज्ञ शुरू है। उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और दो चरु उत्पन्न हुए। ऋचिक ऋषि ने एक चरु अपनी पत्नी को दिया, देखो इसे आप ही खाना जिसे आपके पेट में गर्भ आएगा, और दूसरा चरु अपनी सास को दिया किसे आप खा लेना। ये कह के रुचिक ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। अब यह सत्यवती और उनकी मां दोनों के हाथ में चरु है और दोनों को कह के गए कि ठीक से ध्यान से खाना। अब सत्यवती की मां सत्यवती को कह रही है कि बेटा ये तुम्हारे पति ने हम दोनों के लिए चरु बनाए हैं, निश्चित तुम्हारा चरु जो होगा कुछ प्रभावशाली होगा और मेरे चरु में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तुम उनकी पत्नी हो और मैं उनकी सास हूं, मेरे लिए जो चरु बनाया होगा उससे कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम्हारे चरु में प्रभाव होगा। और देखो बेटा हम क्षत्रिय हैं और तुम जानते हो कि मुझे प्रभावशाली पुत्र की आवश्यकता है और तुम्हें तो तुम्हारे पति से और भी कई सारे पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए बेटा तुम्हारा चरु जो है वो मुझे दे दो, मेरा चरु तुम खा लो। देखिए शास्त्र की घटना, मां के कहने पर बेटी ने कहा, सत्यवती ने कहा ठीक है माते जैसा आपकी इच्छा, अपना चरु मां को दे दिया, मां का इस बेटी ने खा लिया, दोनों खा लिए। ऋचिक ऋषि आए, कहा कि हमने चरु अदली बदली कर दिया है। अरे बाप रे, ऋचिक ऋषि दुखी हुए, कहा कि देखो सत्यवती मैंने तुम्हारे लिए जो चरु उत्पन्न किया था उसमें ब्राह्मण का तेज था और तुम्हारी मां के लिए जो चरु उत्पन्न किया था उसमें क्षत्रिय का तेज था, क्योंकि वो क्षत्रिय है। अब दोनों ने अदला बदली कर दिया तो हम ब्राह्मण हैं और आपका जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय घोर स्वभाव वाला होगा और वो तुम्हारी मां उसने क्योंकि तुम्हारा चरु खाया है और वो क्षत्रिय होते हुए भी उसका पुत्र ब्राह्मण स्वभाव का होगा, गड़बड़ कर दी तुमने। और ऐसा ही हुआ, ये चरु खा लिया, इसलिए है सत्यवती की मां गाधी जो थे वो क्षत्रिय थे परंतु उनकी पत्नी ने ब्राह्मण का चरु खाया था इसलिए उसके पुत्र हुए विश्वामित्र। ये विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे परंतु उनका स्वभाव ब्राह्मण का था। और यहां पर सत्यवती को जब कहा कि तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव का होगा भले तुम ब्राह्मण हो, तब सत्यवती ने अपने पति च्यवन ऋषि के चरण को पकड़ लिया, रुचिक ऋषि के चरण को पकड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा पुत्र घोर स्वभाव का न हो ऐसा कुछ कीजिए। तब उनकी प्रार्थना करने पर रुचिक ऋषि ने कहा आप एक काम कीजिए, आपकी प्रार्थना से आपका पुत्र शांत स्वभाव का होगा परंतु उनका जो पुत्र होगा वह घोर स्वभाव का होगा। इसलिए रुचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ जो शांत स्वभाव के थे, परंतु इन्होंने कहा था कि उस जमदग्नि का जो पुत्र है वह घोर स्वभाव का होगा, इसलिए जमदग्नि का आठवां पुत्र परशुराम जो घोर स्वभाव के हुए। यह है हमारा इतिहास और परशुराम की कथा अद्भुत है। एक समय की बात, जमदग्नि ऋषि यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी रेणुका को पानी लेने के लिए भेजे। जमदग्नि की पत्नी रेणुका पानी लेने के लिए सरोवर में गई। वहां पर सरोवर में कुछ गंधर्व और गंधर्विया आपस में विहार कर रहे थे। रेणुका गंधर्व का विहार देखने में रुक गई, क्योंकि अद्भुत दृश्य था। और यहां पर जमदग्नि ऋषि ने देखा कि यज्ञ में देरी हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है, और यह मेरी पत्नी आई क्यों नहीं, कहां रुक गई, कहां देर हो गई। तब जमदग्नि ऋषि ने ध्यान करके देखा तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका उस नदी किनारे गंधर्वों का विहार देखने में खड़ी थी। जब वह पानी भरकर आई तब जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हो गए और जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र को कहा कि अपनी मां का सिर काट दो। पुत्र ने ना कहा, हम नहीं काटेंगे, मां को थोड़ी ना मारा जाता है। दूसरे पुत्र को कहा, दूसरे ने ना कहा, तीसरे को कहा, ना कहा, सात पुत्र को पूछा, सातों ने ना कह दिया और आठवां परशुराम जंगल में लकड़ी काटने गया था परसु लेकर। जब परशुराम जी जंगल में लकड़ी काटकर परसु लेकर आए तब पिता क्रोधित थे। जमदग्नि ने कहा कि ये तुम्हारी मां ने अपराध किया है, तुम्हारी मां का सिर काट दो और ये सातों भाई तुम्हारे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, इसके भी गर्दन काट दो। परशुराम ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मां का गला काटा और सातों भाइयों का खच 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 करके काट डाला, सब गिर गया। यह है घोर स्वभाव। लेकिन आप यह मत समझिए कि परशुराम मातृभक्त नहीं थे। परशुराम जानते थे कि मेरे पिता कितने प्रभावशाली हैं। परशुराम जी अपने पिता की महिमा को जानते थे, इसलिए उन्होंने यह कार्य किया। और जब अपनी मां की गर्दन काट दी, पुत्र के अपने भाइयों के सिर को काट दिया, तब परशुराम के पिता जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। बेटा तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। क्या चाहिए? अच्छा पिताजी आप मुझ पर प्रसन्न हो, जो चाहिए वो दोगे? हां, तो सबसे पहले आप मेरी मां और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। दूसरा कि ये मेरी मां और मेरे भाइयों को स्वप्न में भी यह ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी उसको मारा था, नहीं तो जीवित होने के बाद मेरे से क्रोध करेंगे। और तीसरा मुझे आशीर्वाद दो कि रणभूमि में मुझे कोई हरा न सके। तथास्तु। जमदग्नि ने आशीर्वाद दिया, मां जीवित हो गई, भाई जीवित हो गए और परम पराक्रमी बन गए परशुराम। ये परशुराम का आशीर्वाद, परशुराम की कृपा ब्राह्मणों के ऊपर अद्भुत है। और एक कथा, महिष्मती नगरी का राजा जिसका नाम कार्त्यवीर अर्जुन था, ये कार्त्यवीर अर्जुन अपनी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय को प्रकट किया और भगवान दत्तात्रेय से कार्त्यवीर अर्जुन ने 1000 भुजा की मांग की। भगवान दत्तात्रेय ने आशीर्वाद दिया और 1000 भुजा कार्त्यवीर अर्जुन को प्रदान की। उस 1000 भुजा होने के कारण उसका नाम सहस्त्र बाहु हो गया। सहस्त्र बाहु। अब एक तो आसुरी वृत्ति का था, ऊपर से 1000 भुजा। रात दिन ढूंढता रहता था कि मेरे साथ युद्ध करने वाला इस दुनिया में कौन है। एक बार समुद्र के पास गया, समुद्र को पकड़ लिया, कहा बताओ मेरे साथ बराबरी करने वाला, युद्ध करने वाला इस संसार में कौन है? तब समुद्र ने कहा कि आपके साथ युद्ध करे ऐसा तो इस संसार में कोई नहीं दिख रहा है, हाँ जमदग्नि का पुत्र परशुराम अवश्य आपके साथ युद्ध करने में बराबर है। ये सहस्त्र बाहु अपनी हजारों की सेना को लेकर जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आए। परशुराम जी घर पर नहीं थे। जमदग्नि ने सहस्त्र बाहु के सेना को सबका आदर किया, स्वागत किया और सबको बहुत सुंदर भोजन कराया, रोटी सब्जी दाल भात स्वीट खीर सीरा इत्यादि। अनेक अक्षौणी सेना, हजारों हजारों लोग थे उस सेना में, सबको भोजन कराया। भोजन के बाद सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन सोच रहा था कि ये फक्कड़ बाबा जंगल में की झोपड़ी में रहने वाले हजारों को भोजन कैसे करा सके। तब उसे पता चला कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय है, उस गाय के प्रभाव से सबको भोजन कराया। तब सहस्त्र बाहु ने कहा जमदग्नि को, आप एक काम करो, ये कामधेनु गाय मुझे दे दो, मेरे राज्य में रहेगी, मुझे काम आएगा, आपको क्या इसकी जरूरत है, मुझे दे दो। जमदग्नि ने कहा मैं नहीं दूंगा, दे दो नहीं दूंगा, दे दो नहीं दूंगा, ऐसा हुआ। और सहस्त्र बाहु ने उस समय जमदग्नि का वध किया और कामधेनु गाय को लेकर चला गया। कुछ क्षण के बाद परशुराम जंगल से आए, देखा तो उनकी मां रेणुका विलाप कर रही थी, रो रही थी। परशुराम ने देखा कि उस समय उनकी मां ने 21 बार उनकी छाती को पीटा था और बात उनके दिमाग में फिट हो गई और पूछा अपनी मां को कौन आया था। मां ने इशारा किया, उस समय परशुराम जी गए। आज तक सहस्त्र बाहु कहते हैं ये सहस्त्र बाहु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, रावण को मच्छर की तरह पकड़ लिया था। रावण जिसके बारे में आप कल सुनोगे, चलत दशानन डोलती अवनी, रावण जब चलता था तो उस पृथ्वी को कपाते हुए चलता था। 10 मस्तक वाले रावण को जिसने मच्छर की तरह पकड़ लिया हो वह सहस्त्र बाहु कितना शक्तिशाली हो सकता है। परंतु परशुराम इतने पराक्रमी थे, केवल अकेले अपने परशु से इस सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजा को काट डाला, सहस्त्र बाहु का वध कर दिया। और इतना ही नहीं, उस समय उस संसार में जितने भी पाखंडी क्षत्रिय थे सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। क्षत्रियों का विनाश करके क्षत्रियों के हाथ से राज्य लेकर परशुराम ने ब्राह्मणों को राज्य दे दिया। उस समय संसार में जितने भी ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों को राजा बना दिया, आप राज करो ऐश करो। परंतु होता क्या था, कुछ क्षत्रिय भागकर बच गए थे। धीरे धीरे क्षत्रियों का समाज बढ़ता था, उस ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाते थे, दान और दक्षिणा देते थे। दान और दक्षिणा के लोभ मोह में वह ब्राह्मण अपना राज्य चूक गए और क्षत्रिय फिर से राजा बने। परशुराम ने देखा कि फिर से क्षत्रियों का पाखंड चल रहा है, फिर से परशुराम अपने परशु को लेकर पूरे दुनिया में जितने भी क्षत्रिय थे सबका वध कर दिया। कहा जाता है कि परशुराम की मां ने 21 बार छाती पीटी थी, परशुराम ने 21 बार इस संसार में न क्षत्रिय कर दिया, क्षत्रियों का विनाश किया। और 21वीं बार क्षत्रियों का विनाश किए फिर भी यह ब्राह्मण थोड़े से धन और भोग के लोभ में अपने राज्य को संभाल नहीं पाते थे। तो परशुराम ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि मैं इतनी बार मेहनत कर रहा हूं, क्षत्रियों को मार काट कर आप ब्राह्मणों को राज्य दे रहा हूं और आप लोग राज्य छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण किसी भी देश पर राज नहीं कर सकेगा, राजा नहीं बन सकता। इस प्रकार से परशुराम जी के अद्भुत अद्भुत पराक्रम है और परशुराम जी के पराक्रम त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जब राजा जनक की स्वयंवर सभा में जाते हैं और वहां पर भगवान रामचंद्र के द्वारा वह शिव धनुष टूटता है, उसकी आवाज को सुनकर मंदार पर्वत से परशुराम जी आए थे और लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हुआ था, अद्भुत संवाद। यह कथा हम सब कल सुनेंगे क्योंकि यह राम कथा के अंतर्गत है। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा, भगवान श्री रामचंद्र बहुत सुंदर लीला करेंगे और अंत में रावण का वध होगा। आप सब भक्तों को निवेदन है कल बहुत सुंदर उत्सव है, सब लोग नए नए कपड़े पहन कर आइए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। भगवान का जन्म है और इस जन्म के उत्सव पर सब नाचेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र के उपदेश को जीवन में धारण करेंगे। हरे कृष्ण।